دیکھیے بھائی آگے سبق، وقد يحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق لقيام قرينة جوازا كقولك لمن قدم من سفره خير مقدم أي قدمت قدوما خير مقدم فخير اسم تفضيل ومصدريته باعتبار الموصوف أو المضاف إليه لأن اسم التفضيل له حكم ما أضيف إليه. بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے مفعول مطلق کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا بھائی، اور صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ مفعول مطلق کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ تمام مفاعیل میں سے صرف یہی ہے جس پر مفعول کے صیغے کا اطلاق صحیح ہے بغیر با فی مع یا لام کی قید کے، باقیوں کے اندر بھی یا لہو یا فیہ یا معہو کی قید لگانا پڑتی ہے، جبکہ اس پر ان قیدوں کے بغیر بھی مفعول کے صیغے کا اطلاق صحیح ہے، کیونکہ مفعول کا کیا معنی عربی زبان میں؟ کیا ہوا. تو یہ جو مفعول مطلق ہے یہ بھی فاعل کا کیا ہوا ہے. جیسے دیکھو ضرب زید، زید نے ضرب لگائی. اب آپ سے کوئی پوچھے زید نے کیا کیا تو آپ کہیں گے ضرب، ضرب کا فعل کیا. تو دیکھو زید کا کیا ہوا کیا ہے؟ ضرب ہے. تو اس لیے اس پر مفعول یعنی کیا ہوا کا اس صیغے کا اطلاق صحیح ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کو فاعل کرتا ہے اور اس کو وجود دیتا ہے، جبکہ باقی مفاعل ایسے نہیں کہ فاعل ان کو وجود دے. مفعول بھی ہے، اس پر تو فاعل کا فعل صرف واقع ہوتا ہے، فاعل مفعول بھی کو وجود نہیں دیتا. اسی طرح مفعول معہو ہے، وہ تو فاعل کے ساتھ اس فعل کے کرنے میں شریک ہے، فاعل نے کوئی اس کو وجود نہیں دیا. اور اسی طرح مفعول فی ہے، وہ تو زمانے کا نام ہے جس کے اندر فاعل نے فعل کیا ہے، تو وہ زمانے کا نام ہے، فاعل نے اس کو کوئی وجود نہیں دیا. ہاں مفعول لہو ایسا ہے جس کو یہ فاعل وجود دیتا ہے. ضرب زید تادیبا، زید نے ضرب لگائی ادب سکھانے کے لیے. تو یہاں اب زید کے دو فعل ہیں، ایک ضرب اور ایک تادیب. یہ ادب سکھانے کا کام بھی کس نے کیا؟ زید نے. اور ضرب بھی کس نے لگائی؟ زید نے. تو وہی ضرب بائی لحاظ کہ اسے دوسرے کو تکلیف ہوئی ہے یہ ضرب کہلاتی ہے، اور وہی ضرب بائی لحاظ کہ اس سے دوسرے کی اصلاح ہوئی ہے اور اس نے ادب سیکھا ہے اسے تادیب کہتے ہیں. تو یہ دونوں فعل زید کے مفعول ہیں، یہ دونوں فعل زید کے مفعول ہیں، یعنی زید نے ان کو وجود دیا ہے. ضرب کو بھی زید نے وجود دیا، زید کے اس فعل سے پہلے ضرب زید کا وجود نہیں تھا. اور یہ تادیبن کو بھی زید نے وجود دیا، کیونکہ یہ ضرب زید سے پہلے تادیب زید کا وجود نہیں تھا، زید نے یہ فعل کیا تو اس کا وجود پایا گیا. تو مفعول لہو بھی فاعل کا کیا ہوا اور مفعول مطلق بھی فاعل کا کیا ہوا، یعنی دونوں فاعل کے مفعول ہیں. تو پھر تو مفعول لہو پر بھی مفعول کے صیغے کا اطلاق صحیح ہونا چاہیے بغیر با فی مع یا لام کی قید کے، کیونکہ وہ بھی فاعل کا کیا ہوا ہے. تو میں نے فرق بتلایا تھا کہ بھئی یہ جو فاعل کو فاعل کہا جاتا ہے یہ اس مفعول مطلق کی وجہ سے فاعل کہا جاتا ہے، مفعول لہو کی وجہ سے نہیں. ضرب زید تادیبا، یہ زید کیا ہے؟ فاعل ہے، یہ فاعل ہے. اور یہ فاعل کس وجہ سے کہلا رہا ہے؟ ما قبل میں فعل کیا ذکر ہے؟ ضربا کا. تو اس ضربا کے فعل کی وجہ سے یہ فاعل کہلا رہا ہے، یعنی ضرب کا جو فعل اس نے کیا ہے، یعنی جو مفعول مطلق والا فعل اس نے کیا ہے، اس فعل کی وجہ سے یہ فاعل کہلا رہا ہے، تادیب کی وجہ سے یہ فاعل نہیں کہلا رہا. تو بائی لحاظ مفعول مطلق کی زیادہ تخصیص ہے کس کے ساتھ؟ فاعل کے ساتھ، کیونکہ فاعل اسی کی وجہ سے فاعل کہلا رہا ہے. ضرب زید تادیبا، اگر یہ زید کی ضاربیت نہ ہوتی تو زید فاعل نہ کہلاتا، تو زید اس ضاربیت کی وجہ سے فاعل کہلا رہا ہے، تادیب کی وجہ سے فاعل نہیں کہلا رہا. تو اس لیے معلوم ہوا فاعل کا فعل حقیقت میں ضرب ہی ہے، تادیب بھی اس کا فعل ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ فاعل نہیں کہلا رہا. تو حقیقت میں گویا فاعل کا فعل صرف کیا ہے؟ وہ ضرب ہے، یعنی وہ مفعول مطلق ہے. तो सिर्फ मफूल मुतलक पर मफूल के सीगे का इतलाक सही है बगैर किसी कैद के, जबकि बाकी मफाइल पर बगैर कैद के मफूल के सीगे का इतलाक सही नहीं है। और यही वजह है इसको मुकदम करने की भी, इसी वजह से साहिब काफिया ने इसको मुकदम किया, क्योंकि हकीकत में फाइल का मफूल यही है भाई, हकीकत में फाइल का मफूल यानी किया हुआ काम यही है, इसी को फाइल ने वजूद दिया है तो इसको मुकदम किया। तो मफूल लहू भी फाइल का किया हुआ है, लेकिन हकीकत में फाइल किसकी वजह से फाइल कहला रहा है, इस मफूल मुतलक की वजह से यानी इस जर्ब की वजह से वो फाइल कहला रहा है। तो मालूम हुआ कि फाइल की ज्यादा तख्सीस किसके साथ है, इस मफूल मुतलक के साथ है, इसलिए मफूल मुतलक को मुकदम किया किस पर, मफूल लहू पर। और नीस इस वजह से भी मुकदम किया कि मफूल मुतलक तो हर फेल के लिए होता है, चाहे आप जिक्र करें या ना करें। जरबा जैदुन, मैंने आगे कोई जरबन जिक्र नहीं किया, लेकिन जैद का फेल क्या है, जरब है। शरीबा आमरुन, मैंने आगे कोई मफूल मुतलक जिक्र नहीं किया, लेकिन आमर का फेल क्या है, शुरब है। तो मफूल मुतलक हर फेल का होता है, चाहे आप जिक्र करें या न करें। जबकि मफूल लहू वो तो माकबल फेल की इल्लत बयान करता है, वो हर फेल का नहीं होता। बहुत से काम आप ऐसे करते हैं जो आबस होते हैं, बेकार होते हैं, उनका कोई मकसद ही नहीं होता। जैसे मैंने पहले भी मिसाल जिक्र की थी, आप बैठे हुए हैं और सोच में डूबे हुए हैं और तिनके के साथ आप जमीन को कुरेद रहे हैं। अब देखो ये आपका ऐसा काम है जो आबस है, बेकार है, उसका कोई मकसद नहीं। तो इस तरह अगर आप गौर करेंगे, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो इंसान आबस करता है, जिसका कोई मकसद नहीं होता। और फिर बतलाया था कि मफूल मुतलक किसे कहते हैं, वो नाम है उस हदस का जिसको फेले मजकूर के फाइल ने किया हो, और वो फेले मजकूर उस हदस यानी उस मसदर के हम माना हो, उस मसदर के हम माना हो भाई। तो ये जो मफूल मुतलक की तारीफ की कि मफूल मुतलक उस हदस का नाम है जिसको फाइल ने किया हो, तो इस पर इश्काल होता है कि बहुत से मफूल मुतलक ऐसे हैं कि जिनके फेल को फाइल ने किया नहीं, यानी फाइल ने उनको वजूद नहीं दिया होता, वो तो आपकी तारीफ से निकल गए। जैसे माता जैदुन मौतन, ये मौतन मफूल मुतलक है, लेकिन ये मरने का फेल जैद ने तो इसको वजूद नहीं दिया, जैद ने तो इसको अपने इख्तियार से नहीं किया। इसी तरह जसुमा जसामतन, बड़े जिस्म वाला होना, ये भी जो बड़े जिस्म वाला है वो उसने अपने इख्तियार से तो नहीं किया, ये तो अल्लाह ने उसको बड़ा जिस्म अता फरमाया है। इसी तरह शरूफ और शरफन वगैरह जैसे अफाल के मफूल मुतलक तो निकल जाते हैं, क्योंकि इनको तो फाइल वजूद नहीं देता, अपने इख्तियार से नहीं करता। तो उसका भी जवाब दिया था साहिब जामी ने कि फाइल के फेल को करने का मतलब यह है कि वो फेल उसकी सिफत हो, वो फाइल है तो वो फेल है, वो फाइल नहीं तो वो फेल भी नहीं, और वो उस फेल की तरह फाइल का इस्नाद सही हो भाई। ये माना नहीं कि फाइल ने उसको वजूद दिया हो। तो अब मात जैदुन मौतन, अब ये बेशक मौत का फेल जो है इसको जैद ने वजूद नहीं दिया, लेकिन यह मौत जैद की सिफत है, ये मौत जैद की सिफत है, क्योंकि मरा कौन है, जैद है, तो ये मौत जैद की सिफत है। और नीज इस मौत का इस्नाद जैद की तरफ सही है, माता जैदुन मौतन, देखा जैद की तरफ माता का इस्नाद किया जा रहा है। तो फाइल के फेल को करने का मतलब ये है कि उसकी तरफ इस्नाद सही होना चाहिए, फिर वो चाहे इस्नाद जो है वो इस्नाद चाहे ईजाबी हो चाहे सलबी, यानी चाहे उसमें किसी चीज का इस्बात किया गया हो चाहे किसी चीज की नफी की गई हो, जैसे मा जाराबा जैदुन जरबन, अब इसमें फेले मनफी है तो तर्रमा क्या, जैद ने पिटाई नहीं की, और आपने तो हमें क्या कहा था मफूल मुतलक किसे कहते हैं, वो फेल जो फाइल ने किया हो, और यहां तो जरबा का फेल जैद ने नहीं किया, हर्फ नफी दाखिल है, मालूम हो उसने जरब वाला फेल नहीं किया, तो इसके बाद भी मफूल मुतलक आ रहा है, तो ये भी तारीफ से निकल गया, क्योंकि ये जरब का फेल तो फाइल ने नहीं किया। तो उसका भी जवाब हो गया कि फेल के करने का माना यह है कि उस फाइल की तरफ इस्नाद सही हो, और यहां पर भी मा जरबा का इस्नाद जैद की तरफ सही है। और फिर उसके बाद बतलाया था कि यहां तक जो तारीफ हुई कि मफूल मुतलक वो नाम है उस हदस का जिसको फाइल ने किया हो, तो इसमें तमाम दुनिया के मसादिर दाखिल हो गए, तमाम दुनिया के मसादिर दाखिल हो गए, इसलिए क्योंकि हर मस्तर को किसी न किसी फाइल ने किया होता है। मस्तर के लिए हमेशा कोई फाइल चाहिए, बगैर फाइल के तो मस्तर नहीं हो सकता। जर्ब के लिए कोई जारिब चाहिए, शुर्ब के लिए कोई शारिब चाहिए, अकल के लिए कोई आकिल चाहिए। तो लिहाजा इसमें सारे अफाल दाखिल हो गए थे, क्योंकि हर मस्तर जो है उसके लिए कोई ना कोई फाइल चाहिए। फिर आगे जब मजकूर इन कहा तो इस कैद के जरिए वो तमाम मसादिर निकल गए जिनका फेल लफ्जों में मजकूर न हो भाई। और फिर उसके बाद यह भी कहा बिमानाहू कि वो फेल, कि वो फेल उस इसम के यानी उस हदस के माना में हो, उस मस्तर के माना में हो। जराबा जैदुन जरबन, यानी ये जो जराबा है ये इस जर्ब के माना में हो। और इसके माना में होने का क्या मतलब, साहिब जामी ने बताया था कि इसके माना में होने का मतलब यह है कि फेल उस मस्तर के माना पर मुश्तमिल हो, यानी वो मस्तर का माना फेल का जुज होना चाहिए, क्योंकि फेल के अंदर तीन चीजें होती हैं, मस्तर, जमाना और निस्बती लल फाइल। तो मस्तर फेल का जुज होता है। और फिर कहते हैं कि ये जो बिमानाहू की कैद आई, इसके जरिए करीह तू कराहती जैसी मिसालें भी निकल गईं, क्योंकि एतराज होता था कि आपने ये जो मफूले मुतलक की तारीफ की, ये दुखूले गैर से मान्या नहीं। इसके अंदर करीह तू कराहती जैसी मिसालों के अंदर ये जो कराहती लफ्ज आ रहा है ये भी दाखिल हो रहा है, हालांकि ये तो मफूले मुतलक नहीं है, ये तो मफूले भी ही है। करीह तू कराहती, मैंने नापसंद किया अपनी नापसंदीदगी को, या मैंने नागवार समझा अपनी नागवारी को। तो ये देखा, ये तो कराहती, इस पर तो फाइल का फेल वाक़े हो रहा है। तो फिर साहिब जामी ने आपको बतलाया कि हमने जो भी मानाहू का तर्जमा आपको बतला दिया कि फेल उसके माना में होने का क्या माना, कि फेल उसके माना पर मुश्तमिल हो, फेल उसके माना पर मुश्तमिल हो, और उस मस्तर का माना फेल के माना का जुज हो। तो इस कैद की वजह से ये करीह तू कराहती जैसी मिसालें भी इस तारीफ से निकल गई। क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो करे तो कराहती, इसके अंदर ये जो कराहत मस्दर जिक्र है, इसके अंदर दो एतबार हैं। एक एतबार ये कि इस कराहत को आप जिक्र करते हैं फेल के बाद, बाई एतबार कि फाइल ने यही वाला फेल किया है, फाइल ने, जब फाइल ने यही वाला फेल किया है तो ये कराहत फाइल की सिफत है। जराबा जैद, जैद ने पिटाई की, तो जैद की सिफत क्या है, जर्ब। तो जब कराहत वाला फेल फाइल ने किया है तो यह कराहत उसकी सिफत हुई। तो आप बई एतबार कराहत के मस्तर को जिक्र करते हैं कि फाइल ने यही वाला फेल किया है और यही वो मस्तर है जिससे इस फेल का इश्तिकाक हुआ है, क्योंकि फाइल की सिफत वही फेल बनेगा ना जो फाइल ने किया है। जब करीह तो फेल किया तो करीह तो किससे मुश्तक है, कराहत से, तो मालूम हुआ ये वही मस्तर है जिससे इस फेल का इश्तिकाक हुआ है। फिर सुनो, आप करीह तो फेल के बाद कराहत के लफ्ज को जिक्र करते हैं, कराहत के मस्तर को जिक्र करते हैं बाई एतबार कि यही फेल फाइल ने किया है और यही इसकी सिफत है और यही वो मस्तर है जिससे इस फेल का इश्तिकाक हुआ है। और फेल का इश्तिकाक जिस मस्तर से हुआ होता है, फेल के अंदर भी वही मस्तर होता है, और जब फेल के अंदर भी वही मस्तर है तो फेल देखो इसके माना पर मुश्तमिल हुआ। जब फेल इसके माना पर मुश्तमिल हुआ तो बाई एतबार यह कराहत क्या है, मफूले मुतलक है, क्योंकि क्या कैद लगाई थी, बिमानाहू, फेल उसके माना पर मुश्तमिल हो। और अगर आप कराहत के मस्दर को फेल के बाद बाई एतबार जिक्र करते हैं कि यह फेल इस पर वाके है भाई, तो बाई एतबार तो फेल इसके माना पर मुश्तमिल नहीं, फेल जिस पर वाके होता है क्या उसके माना पर मुश्तमिल होता है, नहीं। तो वही एतबार जब आप इसको जिक्र करें कि फेल इस पर वाके हुआ है तो इस एतबार से तो फेल इसके माना पर मुश्तमिल नहीं। जब फेल इसके माना पर मुश्तमिल नहीं तो बिमानाहू की कैद से ये निकल गया, क्योंकि हमने तो क्या कैद लगा दी कि फेल उसके माना पर मुश्तमिल होना चाहिए। लिहाजा करेह तो कराहतन, ये कराहतन तो मफूले मुतलक है क्योंकि ये एतबार अव्वल के लिहाज से जिक्र किया गया है। और करेह तो कराहती के अंदर जो कराहती आया ये इस तारीफ से निकल गया क्योंकि इसके माना पर फेल मुश्तमिल नहीं है। बात समझ में आ गई। और मैंने यह भी बताया था कि बाज शारहीन ने इसी कराहती के अंदर दो एतबार बना लिए कि बाज एतबार से यह दाखिल है, बाज एतबार से यह दाखिल नहीं। मैंने बताया नहीं, यह दुरुस्त नहीं है भाई, यह कराहती जो है यह तो कतई तौर पर मफूल बिही ही है और इसको निकलना ही चाहिए, इसको किसी भी एतबार से दाखिल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। और उसके बाद साहिब काफिया ने मफूले मुतलक के फायदे बतलाए थे कि मफूले मुतलक के तीन बड़े फायदे हैं भाई। तीन बड़े फायदे हैं। एक फायदा क्या कि यह कभी कभार ताकीद के लिए आता है, और ताकीद का क्या माना कि कलाम से गलती और मजाज के इहतमाल को खत्म कर देता है, और कभी कभार यह नौ के लिए आता है, और कभी कभार यह आदद बयान करने के लिए आता है। और मैंने बतलाया था कि वह मफूल मुतलक जो ताकीद के लिए आए उसके मफहूम में कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो फेल से मसदर मफहूम हुआ था आगे भी आईन ही वैसा ही मसदर आप जिक्र करें तो फिर यह ताकीद के लिए होगा। क्यों? क्योंकि ताकीद कहते हैं कि एक चीज को पक्का करना, यानी उसको दो दफा जिक्र करना, और दो दफा एक चीज तभी जिक्र होगी कि जो मस्तर फेल से मफहूम हुआ था वही आप दोबारा आगे जिक्र कर दें। और अगर आप आगे ऐसा मस्तर जिक्र करते हैं जिसके मफहूम में कुछ ज्यादती है, मसलन जरित तो जैदन जरबन शदीदन, अब यह जरबन शदीदन यह तो फेल से मफहूम नहीं हुआ, फेल से तो सिर्फ जरबन मफहूम हुआ था, और आगे आप जरबन शदीदन ले आए तो मालूम हुआ यह ताकीद के लिए नहीं हो सकता। ताकीद के लिए क्या जरूरी कि जो फेल से मस्तर मफहूम हुआ था आगे भी वैसा ही मस्तर आप जिक्र करें, उसमें कोई ज्यादती ना हो। अगर उसमें ज्यादती आ गई तो फिर फेल से जो मफहूम हुआ तो वह तो और मस्तर था, और आपने जो आगे जिक्र किया वह तो और मस्तर है। जब दोनों अलग अलग चीजें हैं तो ताकीद आई, ताकीद तो किसे कहते हैं, एक ही चीज को दो दफा जिक्र किया जाए तो फिर ताकीद आती है, अलग अलग चीजों को जिक्र करें फिर तो ताकीद नहीं आती। बात समझ में आ गई। और फिर इन्होंने यह भी बतलाया कि वो मस्दर जो ताकीद के लिए आए उसकी तस्निया और जमान नहीं लाई जाएगी, इसलिए क्योंकि वो ताकीद के लिए है और ताकीद का काम मुफरद के लाने से पूरा हो जाता है, तो लिहाजा तस्निया और जमा लाने की कोई हाजत नहीं। और नीज यह भी बतलाया था इन्होंने आपको कि कभी कभार मफूल मुतलक अपने फेल के लफ्ज के अलावा से होता है, यानी कभी तो मादा ही अलग होता है और कभी सिर्फ बाब अलग होते हैं, जबकि इमाम सीबवे फरमाते हैं कि नहीं, मफूल मुतलक अपने फेल से मुगायर नहीं हो सकता, दोनों का बाब भी एक होना चाहिए और मादा भी एक होना चाहिए, जहां जरा फर्क आ जाए तो वो फिर कहते हैं कि इस मफूल मुतलक के फेल को मुकद्दर निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए भाई, कहते हैं वकद युहज़फुल फ़िअलु नासिबुल मफूल मुतलक। जी यहां से अब आपको बतलाएंगे कि कभी कभार मफूल मुतलक के फेल को हजफ कर लिया जाता है। याद रखना, ये जो मफूल मुतलक का फेल हजफ किया जाता है ये दो किस्म पर है, बाज जगह हजफ जायज होगा और बाज जगह हजफ वाजिब होगा। हजफ जायज कहां होगा आपको बतलाएंगे जहां पर करीना मौजूद हो, कोई ऐसी चीज हो जो बतलाए कि यहां पर यह वाला फेल हजफ है, तो वहां पर फिर उसके फेल को हजफ करना जायज है। मसलन आपका एक साथी सफर से आया, अब आप उससे कहते हैं खैरा मकदमिन। जैसे कोई शख्स आता है, आप उर्दू में उसको क्या कहते हैं, उर्दू में और फारसी में खुश आमदेद। भाई किसी आने वाले की आमद पर खुशी का इजहार किया जाता है कि आपका आना खुशी का बाइस है, तो क्या कहते हैं, खुश आमदेद। इसी तरह अरबी में क्या कहते हैं, खैरा मकदमिन। तो अब एक आपका साथी सफर से आया, आपने उससे कहा खैरा मकदमिन, यानी खुश आमदेद, आपका आना खुशी का बाइस है। तो अब देखो ये खैरा मकदमिन ये मफूल मुतलक है और इसके फेल को आपने हजफ कर लिया, और करीना भी मौजूद है कि जब करीना मौजूद हो ताकि पता तो चले कि यहां पर कौन सा फेल हजफ है। और करीना क्या है, ये उसकी हालत है भाई, वो सामान उठाए हुए अंदर कमरे में दाखिल हुआ, देखो सफर से वापस आया है, तो अब ये उसकी हालत जो है ये दलालत कर रही है उस फेल पर। तो खैरा मकदमिन असल में क्या था, कदीमता खैरा मकदमिन, कदीमता कि आप तशरीफ लाए हैं, खैरा मकदमिन यानी आपका तशरीफ लाना अच्छा है, खुशी का बाइस है। तो खैरा मकदमिन के फेल को हजफ कर लिया, और यह हजफ जवाजी है वजूबी नहीं, आप चाहें तो फेल को जिक्र कर दें और यूं कहें कदीमता खैरा मकदमिन, और या फेल को हजफ कर दें और यूं कहें खैरा मकदमिन, दोनों तरह जायज है। तो लिहाजा यहां पर देखो यह खैरा मकदमिन यह मफूल मुतलक है, खैरा मकदमिन, खैरा मुजाफ मकदमिन मुजाफोन इले, और याद रखो यह खैर जो है यह इसमें तफजील है, असल में था अखयर भाई, इसमें तफजील का वजन क्या है, अफअल वजन, तो ये असल में अखियर था। फिर चूंकि ये कसीरुल इस्तेमाल है और कसरत इस्तेमाल खिफत का तकाजा करती है कि लफ्ज को मुख्तसर और हल्का होना चाहिए जुबान पर, तो फिर इसको खैर बना दिया गया, शुरू से हमजा को हजफ कर दिया गया। और फिर याद रखो ये मुफरत तस्निया जमा मुजक्कर मुअन्नस सब के लिए इसी तरह इस्तेमाल होता है, इसकी तस्निया जमा नहीं लाते, इसको मुअन्नस नहीं लाते। इसी तरह शर्रुन, शर्रुन भी इसमें तफजील है, वो भी असल में था अशर्रो, फिर उसमें भी तख़फीफ की गई क्योंकि ये दोनों क्या है, कसीरुल इस्तेमाल हैं भाई। तो कदीम तखैर मकदमीन, ये खैर क्या है, इसमें तफजील है। और आगे जो मकदमीन आया ये मस्दर मीमी है, ये मस्दर है, ये मस्दर है, इसको मस्दर मीमी कहते हैं भाई, जिस मस्दर के शुरू में मीम आए। ये तो सुलासी मुजर्रद से है, सुलासी मजीद में तो मस्दर मीमी कियासी आम इस्तेमाल होता है। आपने भी गर्दानें पढ़ी हैं, जैसे अकरमा की गर्दान पढ़ी, इससे इसमें मफूल क्या आता है, मुकरमुन, और जर्फ क्या आता है, वो भी मुकरमुन। और याद रखो इससे मस्दर भी आता है इसी मुकरमुन वजन पर, तवज्जो है। तो ये जो सुलासी मजीद के अंदर ये जो इसमें मफ़ऊल का वजन होता है, यही वजन इसमें ज़र्फ़ का भी होता है, और इसी वजन पर बाज़ औक़ात इनके मसादिर भी आते हैं, उसको मस्दर मीमी कहते हैं। मालूम हुआ मुकरमुन ये तीन सीगे हैं, ये इसमें मफ़ऊल भी है, ये इसमें ज़र्फ़ भी है, और ये मस्दर मीमी भी है। तो यहां पर भी ये मकदम क्या है, मस्दर मीमी है, मस्दर है। और मिसाल किसकी जिक्र कर रहे हैं, वो मफूल मुतलक जिसके फेल को हजफ करना जायज है। तो ये खैर मकदमीन भाई, ये मफूल मुतलक कैसे हो गया, ये खैर तो इसमें तफजील है और मस्दर तो मुजाफुन इलेह है आगे, और एतबार तो मुजाफ का होता है, मुजाफुन इलेह का एतबार नहीं होता। तो ये तो आपने इसमें तफजील को मिसाल में जिक्र कर दिया, हालांकि मिसाल किसकी जिक्र करनी चाहिए थी, मफूल मुतलक की। तो जवाब ये कि भाई ये खैर इसमें तफजील है, और इसमें तफजील का वही हुक्म होता है जो इसके मुजाफिले का होता है, और इसका मुजाफिले मस्दर है, तो गोया ये भी क्या है, मस्दर ही के माना में हो गया। बात समझ में आ गई, ये जो इसमें तफजील है ना, इसका वही हुक्म होता है जो मुजाफिले का होता है। मसलन आप कहते हैं जैदुन अफजलुल कौमी, जैद उस कौम में से सबसे बेहतर है, जैद उन सबसे बेहतर है। तो ये देखो ये अफजल मुजाफ और अलकौमी मुजाफुन इले, और इस अफजल का वही हुक्म है जो कौम का है, क्योंकि किसकी बात की, जैद की, कि जैद उस कौम में से अफजल है। तवज्जो है, मालूम हुआ जैद भी उन्हीं में से है, ये अफजल से कौन मुराद है, जैद, और मालूम हुआ ये भी उसी कौम में से है, तो अफजल है मुजाफ, अलकौमी है मुजाफुन इले, और अफजल से कौन मुराद है, अफजलुल कौम कौन है, जैद। तो इसमें तफजील का वही हुक्म है जो मुजाफुन इले का है, क्योंकि जैद भी उसी कौम में से है, उन्हीं के अफराद में से एक फर्द है, जैद उन्हीं में से है। जब भी आप उन पर फजीलत दे रहे हैं, अगर जैद किसी और कौम का हो तो फिर कैसे, क्या माना फजीलत देने का। तो जब इसमें तफजील की इजाफत की जाती है किसी चीज की तरफ, तो इसमें तफजील का वही हुक्म होता है जो मुजाफुन इले का होता है, इसलिए क्योंकि इसमें तफजील उसी के अफराद में से एक फर्द है। जैदुन अफजलुल कौमी, ये अफजल इसमें तफजील है और इसकी इजाफत है अलकौम की तरफ, और किसके बारे में कहा जा रहा है, जैद के बारे में, कि जैद अफजलुल कौम है, उस कौम से अफजल है। मालूम हुआ तो जैद उसी के अफराद में से एक फर्द है भाई, तो इसमें तफजील का भी वही हुक्म होता है जो मुजाफुन इले का होता है। तो यहां पर भी खैर मकदमिन, खैर इसमें तफजील है और मकदमिन मुजाफुन इले है, तो खैर का वही हुक्म है जो आगे मुजाफिले का है, और मुजाफिले तो मस्तर है, गोया ये भी क्या है, मस्तर ही है भाई। तो ये मफूल मुतलक ही की मिसाल है। या बाज और जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि इसके लिए मफूल मुतलक महजूफ निकाल लें, आई कुदूमन खैर मकदमिन, कुदूमन खैरा मकदमीन, कदीमता कुदूमन, देखा कदीमता से कुदूम मस्दर अलग निकाल लिया और खैरा मकदमीन को उसकी सिफत बना दिया। तो मालूम हुआ खैरा मकदमीन ये मफूल मुतलक है, या तो मुजाफिले के एतबार से, क्योंकि इसमें तफजील का वही हुक्म होता है जो मुजाफिले का, तो ये खैरा मकदमीन मफूल मुतलक है, या तो मुजाफिले के एतबार से, या अपने मौसूफ महजूफ के एतबार से, यानी कुदूमन, ऐ कदीमता कुदूमन खैर मकदमीन। अगर आप कुदूमन मौसूफ महजूफ निकालते हैं तो फिर खैर मकदमीन मफूल मुतलक है किसके एतबार से, अपने मौसूफ महजूफ के एतबार से। मालूम हुआ खुद खैरा मकदमीन मफूल मुतलक नहीं है, इसका जो मौसूफ महजूफ है यानी कुदूमन वो मफूल मुतलक है। और आप चाहें तो कुदूमन निकालने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इसका मुजाफिल मस्तर है, तो इसका भी वही हुक्म हो गया। तो ये खैरा मकदमीन खुद ही मफूल मुतलक है भाई। बात समझ में आ गई। देखिए भाई किताब पर कहते हैं वक़द युहज़फुल फ़िअलुन नासिबु लिल मफ़ऊलिल मुतलक़ी, और कभी कभार हज़फ कर लिया जाता है उस फेल को जो नसब देने वाला है मफ़ऊल मुतलक़ को। लिक़ियामि क़रीनतिन, ये लाम बमाने वक्त के है, अय वक़्त क़ियामि क़रीनतिन, जिस वक्त करीना मौजूद हो। भाई ये बात पहले भी गुजर चुकी है कि ये लाम इसको वक्त के माना में लेना, ये लाम इल्लत के लिए भी आता है। तो आप ये तर्जमा न करना कि मफूल के फेल को हजफ कर लिया जाता है करीना कायम होने की वजह से। आप कहेंगे ये माना ज्यादा अच्छा लग रहा है हमें कि फेल को हजफ कर लिया जाता है करीना कायम होने की वजह से। भाई तर्जमा बेशक आपको अच्छा लग रहा है लेकिन इस सूरत में फिर खराबी आ जाती है। भाई खराबी क्या क्या बात हुई कि मफूल मुतलक को हजफ कर दिया जाता है करीना कायम होने की वजह से। मालूम हुआ करीना सबब बना है हजफ का, करीना कायम होने की वजह से। लाम के जरिए इल्लत बयान की जाती है। मालूम हुआ इस हजफ की वजह क्या है, इल्लत क्या है, करीना। हालांकि करीना जो है सबब नहीं बनता हजफ का, हजफ किसी और नुक्ते की वजह से किया जाता है। हां करीना सिर्फ उस पर दलालत करता है। तो जिस जगह जिस वक्त करीना मौजूद हो तो फिर उस नुक्ते की वजह से आप हजफ कर सकते हैं। तो हजफ का नुक्ता कोई और होता है, ये करीना उसके हजफ का बाइस नहीं बनता, इसकी वजह से हजफ नहीं किया जाता बल्कि करीना उसके हजफ पर दलालत करता है। तो कहते हैं कभी कभार वो फेल जो मफूल मुतलक को नसब देता है उसको हजफ कर लिया जाता है लिक़ियामि क़रीनतिन, जिस वक्त करीना कायम हो। जवाजन, और ये हजफ कैसा होता है, जवाजी होता है। का कौली का, जैसे कि आपका कौल लिमन क़दिमा मिन सफ़रिही, उस शख्स से जो अपने सफर से आया है, जो शख्स अपने सफर से आया है आपका उससे कहना खैर मकदमिन, ऐ कदीम तकुदूमन खैर मकदमिन। देखा ये तकदीर इबारत निकालकर बतला दी कि फेल कौन सा हजफ है, कदीमता। और आप चाहें तो मफूल मुतलक को भी महजूफ निकाल लें, कदीमता कुदूमन खैर मकदमिन। और मैंने यह भी बताया आप चाहें कुदूमन निकालें या न निकालें, अगर आपने कुदूमन निकाला तो मालूम हुआ यह खैर मकदमिन मफूल मुतलक है अपने मौसूफ के एतबार से। और अगर आप कुदूमन नहीं निकालते बल्कि यूं कहते हैं कदीम तक खैरा मकदमीन, तो इस सूरत में यह खैरा मकदमीन मफूल मुतलक है अपने मुजाफिले के एतबार से। तो इस सूरत में यह खुद ही मफूल मुतलक है। इसमें तफजील शुरू में आया लेकिन इसमें तफजील का वही हुक्म होता है जो इसके मुजाफिले का होता है। तो कहते हैं फ़ख़ैरुन इस्मु तफ़ज़ीलिन, तो खैर जो है ये इसमें तफ़ज़ील है। वह मस्दरियतुहु बेअतिबारिल मौसूफी, और इसका मस्दर होना मौसूफ के एतबार से है। अबिल मुज़ाफ़ी इलैही, या मुज़ाफ़िले के एतबार से है। लियन्नस्म तफ़ज़ीलि लहु हुक्म मा उज़ीफ़ इलैही, इसलिए क्योंकि इसमें तफ़ज़ील जो है उसके लिए वही हुक्म होता है जिसकी तरफ इसकी इजाफत की जाए। भाई वजूबन ऐ हज़्फ़ वाजिबन, और कभी कभार ये मफूल मुतलक के फेल नासिब को वजूबन हजफ कर लिया जाता है। वजूबन के बाद ऐ हज़्फ़ वाजिबन के जरिए साहिब जामी ये बतलाना चाहते हैं कि यह वजूबन मफूल मुतलक है बएतबार मौसूफ महजूफ के। पीछे युहज़फ़ का फेल जिक्र है, उसी से यहां पर हज़्फ़ निकाल लें, हज़्फ़ मफूल मुतलक, और ये वजूबन उसकी सिफत है और वजूब तो मस्तर है। तो इबारत क्या बन गई, वकद युहज़फ़ु हज़्फ़ वजूबन, और वजूबन तो मस्तर है, मस्तर है, और मस्तर का हमल तो जात पर सही नहीं, मस्तर तो किसी की सिफत नहीं बन सकता। हज़्फ़ मौसूफ और वजूबन उसकी सिफत, तो फिर क्या करेंगे, मस्तर को इसमें फाइल के माना में ले लेंगे। ऐ हज़्फ़ वाजिबन, यानी ऐसा हज़्फ़ जो वाजिब है। भाई ये बातें पहले भी कई मरतबा गुजर चुकी हैं। सिमान, अच्छा याद रखो मफूल मुतलक के फेल को हजफ किया जाता है और ये हजफ दो किस्म पर है, कभी ये हजफ जायज होगा और कभी वाजिब। फिर वाजिब के अंदर आपको बतलाएंगे, वाजिब के अंदर कि हजफ वाजिब जो है ये फिर दो किस्म पर है, حذف واجب دو قسم پر ہے، بعض جگہ حذف واجب ہوتا ہے یہ سماعی ہے یعنی سماع پر موقوف ہے، عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے، کوئی ضابطہ اور قانون اس کا نہیں، اور بعض جگہ یہ مفعول مطلق کا حذف واجب ہوتا ہے اور یہ قیاسی ہے یعنی قانون کے مطابق ہے. علماء نحو نے غور کر کے ان کے لیے قوانین تیار کیے اور پورے کلام عرب کو چھان مارا تو دیکھا یہ ہر جگہ واقعی انہی قوانین کے مطابق استعمال ہوئے ہیں. تو معلوم ہوا حذف واجب کتنی قسم پر؟ دو قسم پر، کچھ سماعی ہے کچھ قیاسی. سماعی کا کیا معنی؟ کہ عربوں سے ہم نے ایسے ہی سنا ہے. بھئی کچھ جگہیں ایسی ہیں، ادھر دیکھیے، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے. ہم نے آج تک کسی عرب سے نہیں سنا کہ اس نے ان کے فعل کو ذکر کیا ہو، ہمیشہ کیا کرتے ہیں وہ ان کے فعل کو حذف ہی رکھتے ہیں. معلوم ہوا یہ جو مفعول مطلق ہیں ان کے فعل کا حذف واجب ہے. اگر واجب نہ ہوتا تو کچھ عرب تو کم از کم ذکر کر دیتے، لیکن کسی نے بھی ذکر نہیں کیا، معلوم ہوا یہ حذف واجب ہے، حذف واجب. پھر اس میں علماء نے غور کیا کہ یہاں جو حذف واجب ہے اس کی وجہ کیا ہے، تو کچھ چیزوں کے لیے وہ قوانین بنانے میں کامیاب ہو گئے. ان کو انہوں نے کہا یہ قیاسی ہیں یعنی قانون کے مطابق ہیں، اور جہاں آپ کے کلام میں بھی اس جیسی جگہ آئے تو آپ کے لیے بھی حذف واجب ہوگا، آپ اس پر قیاس کر سکتے ہیں. اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جو سماعی ہیں یعنی سماع پر موقوف ہیں، ہم نے ان کے لیے بہت کوشش کی کہ کوئی قضابطہ اور قانون بنا دیا جائے کہ پتا چلے اس قانون کی وجہ سے عرب جو ہے حذف کرتے ہیں، لیکن پوری کوشش کے باوجود کوئی قانون ہم نہیں بنا سکے. بھائی کوئی قانون، تو جن کے بارے میں قانون نہیں بنا سکے ان کو کیا کہا؟ سماعی ہیں، سماع پر موقوف ہیں، بس ہم نے عربوں سے سنا ہے. قانون کیا ہے، کیوں حذف واجب ہے؟ کہتے ہیں نہیں کوئی قانون نہیں ہے، بس عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے. اور کچھ کے بارے میں کہ یہ قانون ہے اور ایسے مقام پر عرب حذف کرتے ہیں، پورے کلام عرب میں دیکھا واقعی ایسا تھا. بھائی تو معلوم ہوا حذف واجب کتنی قسم پر؟ دو، یا سماعی ہوگا یا قیاسی. سماعی کا کیا معنی؟ جو سماع پر موقوف ہے، عربوں سے اسی طرح سنا ہے یعنی اس کے لیے کوئی ضابطہ اور قانون نہیں، اور قیاسی وہ جن کے لیے ضابطہ اور قانون ہے. بھائی تو کہتے ہیں وَوُجُوبًا اَيْ حَذْفًا وَاجِبًا سِمَعًا، یعنی ایسا حذف جو واجب ہے اور سماعی ہے. سماعًا کے بعد صاحب جامی فرما رہے ہیں اَيْ سِمَاعِيًا، متن میں تو کیا آیا؟ سماعًا. صاحب جامی اس کی تفسیر کیا کر رہے ہیں؟ سماعیًا. بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو متن میں سماعًا آیا یہ اسم منصوب ہے. اسم منصوب کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں یہ مشدد لگا دی جاتی ہے نسبت کے لیے، جیسے لاہور کی طرف نسبت کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ لاہوریون. اسی طرح سماع کی طرف نسبت کریں گے تو کیا کہیں گے؟ سماعیون. تو یہ سماعن اصل میں سماعین تھا، سماعین تھا، اور اس میں منصوب کے آخر سے یا مشدد کو حذف کیا جاتا ہے. یہ کلام عرب میں عام رائج ہے، اس میں منصوب کے آخر سے یا مشدد کو کثرت سے حذف کر لیا جاتا ہے. تو یہ بھی اصل میں سماعیان تھا، پھر اس یا مشدد کو صاحب کافیہ نے حذف کر لیا اور کیا کہا؟ سماعن. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ اصل میں اس میں منصوب ہے یعنی سماع کی طرف منصوب. سماعن ای سماعیان یعنی سماعی ہے موقوف. یہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں سماعی ہونے کا کیا معنی، کہتے ہیں موقوفاً علی السماعی، یعنی کہ وہ سماع پر موقوف ہے. لا قاعدۃ لہ یعرف بہا، اس کا کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے جس کے ذریعے اس کو جانا جائے. نحو سقیاً، جیسے سقیاً یہ مفعول مطلق ہے، آگے تقدیر کلام نکال رہے ہیں. ای سقاک اللہ سقیاً، اللہ آپ کو سیراب کرے. یہ دعا ہے بھائی، یہ دعا ہے. عرب کسی کو دعا دیتے ہیں، مثلا کوئی اچھائی کسی نیکی پر اس کو دعا دیتے ہیں، سقیاً اللہ آپ کو سیراب کرے. ہم نے کبھی عربوں سے نہیں سنا کہ انہوں نے پورا جملہ کہا ہو سقاک اللہ سقیاً، بلکہ مختصراً صرف کیا کہتے ہیں؟ سقیاً. معنی کیا ہے؟ سقاک اللہ سقیاً، کہ اللہ آپ کو سیراب کرے. تو دیکھو اس کے فعل کو حذف کر لیا اور یہ حذف واجب ہے، اور ضابطہ کہتے ہیں ضابطہ کوئی نہیں، بس یہ سماع پر موقوف ہے، ہم نے عربوں سے اسی طرح سنا ہے. ورعین ای رعاک اللہ رعین، یعنی اللہ آپ کی حفاظت کرے، یہ بھی دعا ہے بھائی، یہ بھی اسی طرح ہم نے عربوں سے سنا ہے. وخیبتن، खैबा ये बद्दुआ है, मसलन किसी काफिर को आप बद्दुआ देते हैं जो इस्लाम और मुसलमानों को तकलीफ दे रहा है, तो आप कहते हैं खैबतन, ये बद्दुआ है। यहां तकदीर कलाम क्या है, खाब खैबतन, के वो नाकाम और नामुराद हो। मिन खाबर रजुलु खैबतन, ये किससे लिया गया है, ये लिया गया है खाबर रजुलु खैबतन से, इजा लम या नल मा तलबा, जब वो शख्स न पाए मा तलबा जिसको वो तलब कर रहा है। जब एक शख्स जिस चीज को तलब कर रहा है उसको न पाए तो उस वक्त कहते हैं खाबर रजुलु खैबतन, तो इसी से फिर बद्दुआ बना ली, खैबतन किसी को बद्दुआ देते हैं भाई। वजदअन, वजदअन, जदअन का माना आपको आगे बतलाएंगे कि इसका माना है मुसला करना, मीम सा लाम और गोलता है, मुसलतुन। मुसला कहते हैं कि किसी के नाक कान होंठ काट देना, आंखें निकाल देना, इसी तरह बाजू वगैरह काट देना, यानी इंसान का हुलिया बिगाड़ देना। अरब के यहां तरीका यह था, सख्त दुश्मनियां होती थीं तो जब दुश्मन को कत्ल कर देते थे तो बाज लोग फिर उनका मुसला भी करते थे, नाक कान वगैरह भी काट देते थे, और शरीयत में इससे मना किया गया भाई, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि अपने किसी दुश्मन को भी कत्ल कर दे, काफिर को भी कत्ल कर दे, मुसला करने की इजाजत नहीं है। बात समझ में आ गई, तो ये मुसला करने को जदअन कहते हैं, और उसी से फिर जदअन ये मफूल मुतलक है। देखो किताब पर वजदअन ऐ जुदिया जदअन, ये किसी काफिर को मसलन आप बद्दुआ देते हैं, जुदिया जदअन उसका मुसला किया जाए, यानी अल्लाह ताला उसको, माना ये है अल्लाह उसको जलील करें, उसको तकलीफों में मुबतला करें भाई। कहते हैं वजद अन ऐ जुदी आ जद अन, उसका मुसला किया जाए। वल जद उकत उल अनफी वल उजुनी व शफती वल यदी, और जद उन जो है कत उल अनफी, ये नाक का काटना है, वल उजुनी और कान का काटना, व शफती और होंठ का काटना, वल यदी और हाथ का काटना है। वह हमदन ये भी मफूल मुतलक है, इसके फेल को भी हजफ करना वाजिब है। वह हमदन ऐ हमिद तो हमदन, मैंने तारीफ की, मैंने हमद बयान की, तो ये खबर भी हो सकती है और ये इंशाए हमद भी मकसूद हो सकता है। वह शुक्रन ऐ शकर तो शुक्रन, मैंने शुक्रिया अदा किया, या मैंने शुक्र अदा किया, मैंने शुक्र अदा किया। तो यहां देखो अरब सिर्फ क्या कहते हैं, आप अरब का कोई काम करें तो वो आपको ये नहीं कहेगा शकर तो शुक्रन, बल्कि क्या कहेगा शुक्रन। व आजबन ऐ आजीब तो आजबन, ये ताजुब का इजहार करने के लिए कहते हैं, किसी की कोई बात अजीब लगी तो आप कहते हैं आजबन, अजीब तो आजबन, ये कहना दुरुस्त नहीं क्योंकि इसके फेल को हजफ करना वाजिब है। आजबन का क्या माना, यानी इंसान अपने ताजुब का इजहार कर रहा है कि यह तो बड़ी हैरत की बात है जी। आगे देखिए, कहते हैं फइन्नहु लम यूजद फी कलामिहिम, इसलिए क्योंकि नहीं पाया गया अरबों के कलाम में, क्या नहीं पाया गया, इस्तेमालुल अफ़ालिल आमिलति फी हादिहिल मसादिरी, उन अफ़ाल का इस्तेमाल जो अमल करने वाले हैं इन मस्तरों में, इन मस्तरों में जो अफ़ाल अमल कर रहे हैं, जो ये साहिब जामी ने सारी तकदीर इबारत हर एक की जिक्र कर दी, कहते हैं कि अरबों के कलाम में नहीं पाया गया कि इन मसादिर के अंदर अमल करने वाले जो अफाल हैं उनका इस्तेमाल। वहाजा माना वजूबिल हज़्फ सिमान, और ये माना है वजूबुल हज़्फ सिमान का। इन्होंने क्या कहा कि हज़्फ वाजिब है, और ये किस पर मौकूफ है, सिमा पर। तवज्जो है, बाज मसादिर के फेल को हज़्फ करना वाजिब है, और ये हज़्फ वाजिब किस किस्म का है, सिमा पर मौकूफ है। तो कहते हैं वहाजा माना वजूबिल हज़्फ सिमान, और ये माना है वजूबुल हज़्फ सिमान का, यानी हज़्फ का वाजिब होना बेतबार सिमा के, उसका ये माना है भाई। कौन सा माना, ये जो पीछे जिक्र कर दिया कि अरबों के कलाम में हमने नहीं पाया कि उन्होंने इनके लिए अफ़ाल को जिक्र किया हो, इस्तेमाल किया हो, किसी अरब ने इनके लिए अफ़ाल को जिक्र नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। ये माना है कि इन मसादिर के फेल का हज़्फ वाजिब है बएतबार सिमा के भाई। माना समझ में आ गया, तो कहते हैं वहाजा माना वजूबिल हज़्फ सिमान, ये माना है वजूबुल हज़्फ सिमान का। कीला अलैहि, इस पर कहा गया है कद काल। अब यहां एक इतराज करेंगे कि आपने तो हमें क्या कहा कि इनके अफ़ाल को जिक्र नहीं किया जाता, इनके अफाल का हजफ वाजिब है। मालूम हो जिक्र करेंगे तो वह गलत है भाई, लेकिन हमने अरबों से सुना है। अरब कहते हैं हमीदतुल्लाह हमदन, और शकरतुहु शुक्रन भी कहते हैं, अजिब तो अजबन भी कहते हैं। देखो फेल को वह जिक्र कर रहे हैं। तो फिर बाज उलमा ने यह जवाब दिया कि भाई यह फसीह अरब का कलाम नहीं है। जो असल खालिस अरब थे वो कभी इनके अफाल को जिक्र नहीं करते थे, ये बाद वाले लोग जो आए उन्होंने इस्तेमाल शुरू कर दिया। फसीह अरब खालिस अरब जो गुजरे थे वो इस्तेमाल नहीं करते थे, हमने उनसे कभी ऐसा नहीं सुना, ये बाद वाले लोग हैं और इनके कलाम का कोई एतबार नहीं है। बाजों ने यह जवाब दिया, और बाजों ने यह जवाब दिया कि इनके फेल का हजफ तब वाजिब है जब इनके साथ हरफे जर यानी जब इनको लाम के साथ इस्तेमाल किया जाए, यानी शुक्रन लहू उसका शुक्रिया, शुक्रन लहू। देखो अब लहू जब उसके लाम इस्तेमाल कर लिया, अब शकरतु को हजफ करना वाजिब है। हमिद तो लहू, ये लहू साथ ले आए तो फिर हजफ वाजिब है, वैसे हजफ वाजिब नहीं है। तो कहते हैं कीला अलैहि, इस पर कहा गया है यानी एतराज किया गया है, कद कालू हमीदतुल्लाह हमदन व शकरतुहु शुक्रन व अजिबतु अजबन, कि तहकीक अरबों ने कहा है हमीदतुल्लाह हमदन और शकरतुहु शुक्रन और अजिबतु अजबन कहा है, यानी फेल को भी जिक्र किया है। फअजाब बाज़ुहुम, तो बाज़ों ने जवाब दिया भी अन्न ज़ालिका लैसा मिन कलामिल फुसहाई, कि ये फसीह लोगों के कलाम में से नहीं है। व बाज़ुहुम, और बाज़ों ने यह जवाब दिया भी अन्न वुजूब अल हज़्फ इन्नमा हुआ फी मस्तुमिल बिल्लामी, कि हजफ का वाजिब होना वो उस सूरत में है कि जब ये लाम के साथ इस्तेमाल हो। नहु हमदन लहू व शुक्रन लहू व अजबन लहू, तो जब लाम के साथ हो तब फेल का हजफ वाजिब है। इस जवाब पर फिर एतराज होता है कि जब लाम का इस्तेमाल होगा फिर हजफ वाजिब है, तो मतन में तो कहीं पर भी लाम जिक्र नहीं है मतन में। तो जवाब फिर वो देते हैं कि भाई मतन में इख्तिसार की वजह से हजफ कर लिया गया, वरना वहां पर भी लाम मौजूद है। हमदन ऐ हमदन लहू, शुक्रन ऐ शुक्रन लहू। आगे देखिए, कहते हैं वकद युहज़फुल फ़िअलुन नासिबुलिल मफ़ऊलिल मुतलक़ हज़्फ़ वाजिबन क़ियासन। अब ये दूसरी जगह आ गई। मैंने आपको बतलाया था कि मफ़ऊल मुतलक के फेल को हज़्फ़ करना वाजिब है। बाज़ जगह ये जो हज़्फ़ वाजिब है वो सिमा पर मौकूफ है, और बाज़ जगह क़ियासी है यानी उसका ज़ाब्ता और कानून है। तो वो हजफ जो वाजिब था और सीमा पर मौकूफ था वो बयान हो गए। अब वो जो कियासी हजफ है उसको जिक्र करने लगे हैं भाई। तो कहते हैं वकद यु हजफुल फ़िअलुन नासिबुलिल मफ़ऊलिल मुतलक़ हज़्फ़ वाजिबन क़ियासन, और कभी कभार वो फेल जो नसब देने वाला है मफ़ऊल मुतलक को उसको हजफ कर लिया जाता है, ऐसा हजफ जो वाजिब होता है और कियासी है। ऐ हज़्फ़न क़ियासियन, यानी हज़्फ़े कियासी है। युअलमु लहू ज़ाबितुन कुल्लियुन, युअलमु लहू मालूम है उसके लिए, ज़ाबितुन कुल्लियुन कुल्ली कानून, ज़ाबित का क्या माना कानून, ऐसा कुल्ली कानून। युहज़फु माहुल फ़िअलु, के उसके साथ फेल को हज़फ कर लिया जाता है, लुजूमन लुजूम के तरीके पर। इधर देखिए, बाज जगहें कियासी हैं यानी उनके लिए ज़ाबता मालूम है कि उस ज़ाबते के होते हुए फिर हज़फ लाजिम होगा। हजफ बास के लिए ऐसा जाब्ता मौजूद है जो कुल्ली है। याद रखो जाब्ता होता ही कुल्ली है, जैसे अल्फाइल मरफून ये जाब्ता है और यह जाब्ता कुल्ली है। अ कुल्लु फाइल इन मरफून, हर फाइल मरफू होगा, लिहाजा इबारत में जहां कहीं आप फाइल लाएंगे उस पर रफा पड़ेंगे, तो जाब्ता होता ही कुल्ली है। तो यहां पर भी इनके लिए भी ऐसा कुल्ली जाब्ता मालूम है कि जहां वो जाब्ता पाया जाएगा यानी जहां उस जैसी सूरत पाई जाएगी तो वहां पर हजफ वाजिब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह हजफ कियासी है। युअलमु लहू ज़ाबितुन कुल्लियुन युहज़फ़ु मअहुल फ़िअलु लुज़ूमन, यानी मालूम है उनके लिए ऐसा कुल्ली कानून कि उसके साथ फेल को लुज़ूमन हजफ किया जाता है। फी मवाज़िअ मुतअद्दिदतिन, कई जगहों में मतन में आया वकियासन फी मवाजिया, और कियासन हजफ किया जाता है फी मवाजिया कई जगहों में। आगे साहिब काफिया 6-7 जगह जिक्र करेंगे जहां पर मफूल मुतलक के عامل فعل کو حذف کیا جاتا ہے اور یہ حذف واجب ہے اور قیاسی ہے، ضابطہ ساتھ ذکر کریں گے، یہ ضابطہ جہاں پایا جائے وہاں آپ کے لیے بھی حذف واجب ہے، اگر آپ ذکر کریں گے تو آپ کلام عرب کے اعتبار سے غلطی کر رہے ہیں، تو 6-7 جگہیں ذکر کریں گے، لیکن یہ صرف 6-7 جگہ نہیں ہیں، جگہیں زیادہ ہیں، تو ان میں سے جو مشہور مشہور ہیں وہ ذکر کر دیں گے، ورنہ تو اور بھی جگہیں ہیں جہاں پر حذف واجب ہے اور قیاسی ہے، بھائی قانون بھی ہے وہاں پر باقاعدہ. تو صاحب جامی نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، فی موازیہ کے بعد متعددتن کا لفظ نکالا کہ یہ حذف قیاسی کیا جاتا ہے، فی موازیہ متعددتن، کئی جگہوں کے اندر. یہ نہیں کہا کہ صاحب کافیہ نے آگے 7 جگہیں ذکر کی ہیں، کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ 7 جگہوں کے اندر، مثلا صاحب کافیہ نے 6 یا 7 جگہیں ذکر کی ہیں تو ان 7 جگہوں کے اندر حذف واجب ہے، بلکہ کیا کہا، فی مواضع متعددت، کئی جگہوں میں یہ حذف کیا جاتا ہے، اشارہ کر دیا کہ کئی جگہیں ہیں ان میں سے صاحب کافیہ چند ایک کو ذکر کریں گے جو مشہور ہیں. بھائی تو کہتے ہیں منہا ای من ہذہ المواضع موضع ما وقع ای مفعول مطلق وقع مثبتا. اب وہ جگہیں ذکر کر رہے ہیں بھائی، اب صرف ذرا متن دیکھیے بھائی، کہتے ہیں منہا ان جگہوں میں سے، ما وقع ایک وہ مقام ہے جہاں مفعول مطلق واقع ہو، مثبتا مثبت ہو کر، توجہ ہے، مفعول مطلق مثبت ہو کر واقع ہو، یعنی اس کے اثبات کا ارادہ کیا گیا ہو، اس کی نفی کا ارادہ نہ ہو، توجہ ہے. ضرب زید ضربن، کیا معنی، زید کے لیے ضرب ہے یا نہیں ہے، ہے. ضرب زید ضربن، معلوم ہوا ضرب زید کے لیے ہے. اور ما ضرب زید ضربن، یہاں بھی ضربن مفعول مطلق ہے، لیکن کیا یہ زید کے لیے اثبات ہے یا اس زید سے نفی کی جا رہی ہے، نفی کی جا رہی ہے، توجہ ہے. تو مراد کیا ہے، ایسا مفعول مطلق جو مثبت ہو، یعنی جس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہو، بعد نفی، اور یہ مفعول مطلق کس کے بعد آئے، نفی کے بعد آئے گا، نفی کے بعد، لیکن اس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہوگا. بھئی کیا معنی، نفی کے بعد آئے، اور اس بات کیسے ہوگا، نفی کے بعد تو نفی ہوتی ہے، کہتے ہیں آگے مثلا الا آ جاتا ہے، ما زید الا سیران، ما زیدن، توجہ ہے، ما زیدن الا، بلکہ یہ مثال دیکھیں کتاب میں، چند سطروں کے بعد متن میں دیکھیں، نحو ما انت الا سیرن، مثال مل گئی. دیکھو اب یہاں کیا مانا ہے، ما انت الا سیرن، دیکھو مانا سمجھ لو، سارا یسیر سیرن کا مانا ہے چلنا، چلنا، ما انت الا سیرن، آپ نہیں ہیں مگر چلتے ہی رہتے، آپ نہیں ہیں مگر چلنے ہی والے، یعنی آپ کو ہر وقت گھومتے ہی رہتے ہیں. مثلا ایک آدمی ہے بہت زیادہ سفر کرنے والا ہے، تو وہ آپ کو کوئی بات سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کبھی قیام کرتا ہوں اور کبھی سفر کرتا ہوں، تو آپ اس کو کہتے ہیں نہیں بھائی، ما انت الا سیرن، آپ کو چلتے ہی رہتے ہیں، آپ کو ہر وقت گھومتے ہی رہتے ہیں، یعنی آپ کا قیام اگر ہے بھی تو وہ لا قیام کی طرح ہے، آپ ہر وقت سفر میں رہتے ہیں، آپ ہر وقت کہیں نہ کہیں گھومتے رہتے ہیں، کبھی ایک جگہ سفر میں ہوتے ہیں کبھی دوسری جگہ. تو دیکھو وہ قیام کو بھی ذکر کر رہا تھا سیر کے ساتھ، آپ نے قیام کی نفی کر دی کہ نہیں قیام گویا ہے ہی نہیں، آپ تو صرف چلتے ہی رہتے ہیں. معنی سمجھ میں آ رہا ہے. اب دیکھو ما انت، آپ نہیں ہے الا سیرن مگر چلتے ہی رہتے، یعنی آپ چلتے ہی رہتے ہیں، آپ گھومتے ہی رہتے ہیں، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، آپ نہیں ہیں مگر چلتے ہی رہتے. یہ تو میں ما اور الا والا ترجمہ کر رہا ہوں، ذرا ما اور الا کو ختم کریں. مثلا دوسری مثال لے لیں، ما زید الا شاعر، زید نہیں ہے مگر شاعر. مخاطب کا خیال تھا زید شاعر بھی ہے اور کاتب بھی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں ما زید الا شاعر، زید نہیں ہے مگر شاعر. تو آپ نے زید کو کس میں بند کر دیا، شاعر ہونے میں بند کر دیا، معلوم ہوا کاتب ہونے کی نفی کر دی آپ نے. بات سمجھ میں آ رہی، کاتب ہونے کی نفی کر دی. ما زید الا شاعر، زید نہیں ہے مگر شاعر، یہ تو ما اور الا کے ساتھ ترجمہ ہے. ما اور الا کے بغیر ترجمہ کریں بھائی، یہ جو الا کے بعد آئے اس کے بعد ہی کا لفظ بڑھا دیں، زید شاعر ہی ہے، یا یہ جو الا کے بعد لفظ آیا ہے اس سے پہلے صرف کا لفظ بڑھا دیں، ہی نہ لائیں، زید صرف شاعر ہے، तो लफ्जी तर्जमा क्या, मा जैदुन इल्ला शायरुन, लफ्जी तर्जमा क्या, जैद नहीं है मगर शायर। और बा मुहावरा तर्जमा कैसे करेंगे, ही या सिर्फ के साथ, जैद शायर ही है, या यूं कहें जैद सिर्फ शायर है, एक ही बात है, जैद शायर ही है या जैद सिर्फ शायर है, मालूम हुआ कातिब नहीं। तो यह बा मुहावरा तर्जमा है। अब मुझे बताइए, इधर देखिए, मा जैदुन इल्ला शायरुन, हर्फ नफी आया या नहीं, हर्फ नफी आया है। और बा मुहावरा तर्जमा करें, जैद शायर ही है, नफी है, देखो नफी नहीं है, वो नफी किसने तोड़ दी थी, इल्ला ने तोड़ दी थी, नफी थी लेकिन इल्ला ने क्या किया, शायर को नफी से निकाल दिया, इल्ला के बाद शायर का लफ्ज आया ना, तो इल्ला ने क्या किया, उस मां की नफी को तोड़ दिया। बात समझ में आ रही है, तो ये इल्ला नफी को तोड़ देता है। तो यहां पर भी इसी तरह है, किताब पर देखिए, मा अंता इल्ला सैरन, ये जो सैरन है ये मफूल मुतलक है और इसके फेल को हजफ करना वाजिब है। और ये किस जगह पर होगा, इन्होंने बतलाया कि जिसके इस बात का इरादा किया गया हो। और मुझे बताइए, मा अंता इल्ला सैरन, इसका बा मुहावरा तर्जमा करें, आप चलते ही रहते हैं, देखा नफी तो कोई नहीं, चलते रहने का इस बात किया जा रहा है मुखातब के लिए, तो यह मफूल मुतलक, नफी के बाद आया, यानी मां शुरू में दाखिल है लेकिन इसके इस बात का इरादा किया गया है, नफी का इरादा नहीं किया गया। आप फिर इबारत देखें, मिनहा मा वका मुसबतन, उन जगहों में से एक वो जगह है जहां मफूल मुतलक जो है वो मुसबत हो, यानी उसके इस बात का इरादा किया गया हो, बादा नफीन, और किसके बाद आए, नफी के बाद, नफी से क्या मुराद है, ये जो मा इल्ला के साथ आ रहा है ये नफी मुराद है, औ माना नफीन, या किसके बाद आए, माने नफी के बाद आए, माने नफी से मुराद है इन्नमा, माने नफी से इन्नमा, याद रखो ये इन्नमा भी हसर का फायदा देता है। मसलन मैं कहता हूं इन्नमा जैदुन शायरुन, इन्नमा भी हसर और तख्सीस का फायदा देता है, जैसे मा और इल्ला। और यहां पर हसर जो आता है, तख्सीस जो आती है, जुजे अखीर में आती है, इन्नमा जैदुन शायरुन, जुजे अखीर क्या, शायर, लफ्ज क्या है आखिर में, इन नमा जैदुन शायर, आखिर में शायर का लफ्ज है, इस शायर में तख्सीस लाई जा रही है, इसके बाद ही का लफ्ज ले आओ या इससे पहले सिर्फ का लफ्ज ले आओ, इन नमा जैदुन शायर, जैद शायर ही है, या जैद सिर्फ शायर है, तो ये इन्नमा भी क्या है, हसर का फायदा देता है, मालूम हुआ ये भी वो मा और इल्ला का माना अदा करता है, तो इसको कहते हैं माने नफी, मा और इल्ला में नफी है या नहीं, तो ये भी वही फायदा दे रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, माने नफी, लफ्जों में तो नफी नहीं है लेकिन माने नफी है, यानी मा और इल्ला का फायदा दे रहा है। तो कहते हैं उन जगहों में से एक वो मफूल मुतलक है जो मुस्बत वाके हो, यानी उसके इस बात का इरादा किया गया हो, बाद नफीन औ माना नफीन, और नफी के बाद आए या माने नफी के बाद, और वो नफी या माने नफी, दाखिलिन अलस्मिन, वो दाखिल हो ऐसे इसम पर, ला यकूनु खबरन अनहु, तवज्जो है, वो नफी या माने नफी दाखिल हो ऐसे इसम पर, ला यकूनु खबरन अनहु, कि ये मफूल मुतलक उससे खबर ना बन सके। इधर देखो, उस मिसाल पे नजर रखो, मा अंता इल्ला सैरन, ये सैरन मफूल मुतलक है और इसके इस बात का इरादा किया गया है, और ये किसके बाद है, नफी या माने नफी के बाद है, और ये नफी या माने नफी किस पर दाखिल है, अंता, ये जो इसम है मां के बाद क्या है, अंता, आगे एक दो सत्रों के बाद है वह इन नमा अंता सैरन, मिसाल मिल गई मतन में, वह इन नमा अंता सैरन, इसमें भी देखो ये इन नमा माने नफी किस पर दाखिल है, अंता यानी इसम पर, किस पर, मा अंता में भी मा किस पर दाखिल है, इसम पर, यह अंता इसम है, और इन्नमा भी किस पर दाखिल है, इसम पर। यह दरअसल निकालना चाहते हैं उस नफी और माने नफी को जो फेल पर दाखिल हो, मालूम हुआ यह मा के बाद फेल नहीं आना चाहिए, इन्नमा के बाद फेल नहीं आना चाहिए, तो वो नफी या माने नफी वो दाखिल हो ऐसे इसम पर कि यह आगे मफूल मुतलक उससे खबर ना बन सके। मिसाल पर नजर रखो, मां किस पर दाखिल है, इसम पर, और ये ऐसा इसम है कि आगे आने वाला सैरन इससे खबर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो मंसूब है। अगर वो खबर होती, खबर तो मरफू होती है, उस पर तो रफा आता है और इस पर नसब आ रहा है, मालूम हुआ ये उससे खबर नहीं बन सकता। इसी तरह वह इन्नमा अंता सैरन, इन्नमा अंता सैरन, इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर भी माने नफी दाखिल है इसम पर, और वो इसम ऐसा है कि आगे आने वाला मफूले मुतलक इससे खबर नहीं बन सकता क्योंकि ये तो मंसूब है। खबर होती तो मरफू होना चाहिए था। शर्तें समझ में आ गई? तीन शर्तें हैं, इधर सुनो कि बास जगह मफूले मुतलक के फेल को हजफ करना वाजिब है और यह वाजिब कियासी है, यानी इसके लिए बाकायदा जाब्ता मौजूद है, और वह जाब्ता पहली जगह उन जगहों में से कौन सी है कि वो मफूल मुतलक, उसमें तीन शर्तें हैं भाई। पहली जगह उसमें तीन शर्तें हैं। पहली शर्त क्या? कि वो मफूल मुतलक मुस्बत हो, यानी उसके इस बात का इरादा किया गया हो। दूसरी शर्त यह कि वह मफूल मुतलक नफी या माने नफी के बाद वाके हो। और तीसरी शर्त यह है कि वह नफी या माने नफी वो ऐसे इसम पर दाखिल हो कि मफूल मुतलक का उससे खबर बनना सही ना हो। भाई बात समझ में आ गई? अब देखिए शरा के साथ ही सारे को कहते हैं, व मिनहा ऐ मिनहा ज़िहिल मवाज़ई, जमीर का मर्जा बतला दिया कि मिनहा की हा जमीर किसको राजे है? मवाज़ई को, और उन जगहों में से जो है मौज़ई मा वका, ये मा वका से पहले मौज़ई का लफ्ज निकाल लिया और आगे आया मा वका, मा वका उसकी तफसीर शारह जामी ने क्या की, ऐ मफ़ूलुन मुतलकुन वका। क्या बतलाना चाहते हैं कि यहां मां से क्या मुराद है? मफूल मुतलक है भाई, और यह मां मौसूफा है, इसीलिए इसके लिए मफूल मुतलक नकेरा निकाला। तवज्जो है? मैंने आपको बतलाया था कि एक मां मौसूला होता है और एक मां मौसूफा, तो यहां मां के बाद क्या निकाला? मा वका ऐ मफूल मुतलक उन वका। तो मालूम हुआ मां से क्या मुराद है, जो मा वका मतन में आया इसे मफूल मुतलक मुराद है, मफूले। और मिनहा, मिनहा की हा जमीर किसको राजे की? मवाज़ई को, उन जगहों में से एक जगह जो है मा वका वो मफूले मुतलक है। मां से क्या मुराद है? मफूले मुतलक। बाकी छोड़ दें, बस देखें मुख्तसर कला, मफूले मुतलक है। उन जगहों में से, उन जगहों में से एक मफूले मुतलक है। भाई मफूले मुतलक जगह का नाम है। इन्होंने क्या कहा? उन जगहों में से एक मफूले मुतलक है। भाई यूं कहे ना, उन जगहों में से एक जगह यह है, उन जगहों में से एक जगह यह है, लेकिन जगह नहीं कहा बल्कि क्या कहा? मफूले मुतलक कहा। उन जगहों में से एक मफूले मुतलक है। भाई मफूले मुतलक तो मौज़े का नाम नहीं, जगह का नाम नहीं, लिहाजा हमल सही नहीं हो रहा था। तो इसलिए साहिब जामी ने मा वका से पहले मौज़े का लफ्ज निकाल लिया कि उन जगहों में से मौज़े मा वका, उन जगहों में से एक जगह मौज़े मा वका वो जगह है जहां मफूले मुतलक वाके हो। अब हमल सही हो गया। इबारत समझ में आ रही? इबारत पे नजर है, मा वका से क्या मुराद है? मफूल मुतलक उन वका, और इससे पहले मौज़े का लफ्ज देखो साहिब जामी ने निकाला है। क्यों निकाला? क्योंकि उसके बगैर हमल सही नहीं होता था। और यहां एक और बात याद रखना कि मिनहा, उन जगहों में से एक जगह, यह मिन तबईजिया है, मिन, और यह जो मिन तबईजिया होता है, उलमा फरमाते हैं कि यह इसम है, यह हर्फ है ही नहीं, यह बाज के माना में है। तो मिनहा का क्या माना है? ऐ बाजुहा। मिनहा का क्या माना? बाजुहा, उन जगहों में से बाज जगह वो हैं जो आगे जिक्र हैं। मिनहा ऐ बाजुहा भाई, तो लिहाजा फिर इस सूरत में यह मुबतदा बनेगा। ये मिनहा इजार मजरूर नहीं है, ये मुजाफ मुजाफिले हैं। तवज्जो है, ये मुजाफ मुजाफिले हैं, ये है मुबतदा और मा वका है इसकी खबर। बाज जगहों में से मौज़े मा वका एक मफूले मुतलक के वाके होने की वो जगह है। बात समझ में आ गई? और अगर आप चाहें तो आम तरकीब कर लें कि मिनहा को जार मजरूर बनाएं, मिनहा को जार मजरूर, और जार मजरूर आप जानते हैं वो खबर तो बन सकते हैं, मुब्तदा नहीं बन सकते, तो ये जार मजरूर खबर मुकदम हो जाएगा और मा वका उसका मुब्तदाए मुअख्खर हो जाएगा। और फिर मिनहा से क्या मुराद है? बाज जगहें,
और आगे मफूल मुतलक है, लिहाजा उस मफूल मुतलक से पहले मौज़ का लफ्ज़ मुजाफ महजूफ निकाल लेंगे ताकि हमल सही हो जाए। बात समझ में आ गई कि उन जगहों में से एक वो जगह है। तो कहते हैं मिनहा ऐ मिनहा दिहिल मवाज़ई, और इन जगहों में से मौज़ु मा वका ऐ मफ़ूलुन मुतलकुन वका, यानी वो इस मफ़ूल मुतलक के वाक़े होने की जगह है। मुस्बतन उरीद इस बातुहू, मुस्बत का क्या माना, यानी उस मफ़ूल मुतलक के इस बात का इरादा किया गया हो, ला नफ़्युहू, उसकी नफी का इरादा न किया गया हो। फ़इन्नहू लौ उरीदा नफ़्युहू, इसलिए क्योंकि अगर उस मफ़ूल मुतलक की नफी का इरादा किया गया हो, नहु मा ज़ैदुन यसीरु सैरन, तो ला यजिबु हज़्फुहू, तो फिर उस फेल का हज़्फ वाजिब नहीं। भाई अगर नफी का इरादा हो, मा ज़ैदुन यसीरु सैरन, ज़ैद चलता नहीं है, यानी जैद घूमता नहीं है, जैद घूमता नहीं है, चलता नहीं है, सफर नहीं करता, तो अब यहां देखो जब नफी का इरादा किया गया है, हर्फ नफी दाखिल है, जैद के लिए घूमना साबित है या न घूमना। मा जैदु यसीरु सैरन, जैद नहीं घूमता, जैद नहीं चलता, तो इससे तो चलने की नफी की जा रही है, तो फिर इस सूरत में हजफ वाजिब नहीं। चुनाचे आप भी देख रहे हैं मा जैदु यसीरु सैरन, देखो फेल को जिक्र किया है, हजफ नहीं किया, तो यह माना है कि अगर इसकी नफी का इरादा किया जाए तो फिर ला यजिब हज़्फुहू, तो उसका हज़्फ वाजिब नहीं। बाद नफ़्यिन दाखिलिन अला इस्मिन, भाई देखिए, भाई देखिए, इन्होंने क्या कहा, पहला मकाम जहां मफूले मुतलक के फेल को हज़्फ करना वाजिब है, कौन सा मकाम है, जब मफूले मुतलक नफी के बाद आए, औ माना नफी, या किसके बाद आए, माने नफी, और वो जो नफी है या माने नफी वो दाखिल हो रहे हों ऐसे इसम पर के आगे आने वाला मफूल मुतलक उससे खबर ना बन सके। तवज्जो है, वो नफी या माने नफी दाखिल हो रहे हों ऐसे इसम पर कि आगे आने वाला मफूल मुतलक उस इसम से खबर, मा और इन्नमा अंता पे दाखिल हो रहे हैं, यानी ऐसे इसम पर कि आगे आने वाला मफूल मुतलक इससे खबर नहीं बन सकता। तो देखो ये जो इबारत आई ना, जरा सिर्फ मतन देखें, बाद नफ़्यिन औ माना नफ़्यिन, के वो मफूल मुतलक किसके बाद आए, नफी के बाद या माने नफी के बाद, दाखिलिन अला इस्मिन, और वो नफी या माने नफी दाखिल हो किस पर, इसम पर। मालूम हुआ इसम पर दाखिल होना ये सिर्फ माने नफी में है या दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर है, नफी या माने नफी दोनों किस पर दाखिल होने चाहिए, इसम पर। तो जब ये दो हैं, तवज्जो है, मालूम हो ये दाखिलिन दोनों की सिफत है कि वो नफी भी दाखिल हो ऐसे इसम पर और वो माने नफी भी दाखिल हो ऐसे इसम पर, दोनों मुराद हैं। जब दोनों मुराद हैं तो दो हो गए, तो फिर दाखिलिन नहीं कहना चाहिए था, तस्निया लाना चाहिए था कि वो दाखिलैन अला इस्मिन, कि वह नफी और माने नफी दोनों दाखिल होने चाहिए इसम पर। तवज्जो है कि ये दाखिलिन इसका ताल्लुक सिर्फ नफी से नहीं और सिर्फ माने नफी से भी नहीं बल्कि दोनों से है। जब दोनों की ये सिफत है तो तस्निया का सीगा होना चाहिए था। तो जवाब याद रखना कि भाई ये नफी और माने नफी के दरमियान आओ आया है, क्या आया है, और जब दो चीजों के दरमियान आओ आए, मालूम हुआ दोनों में से एक वक्त में एक आएगी, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, तो ये अहदुल अमरैन की तावील में है। किस माना में, इन दो चीजों में से कोई एक, तो अब ये दाखिलिन अहदुल अमरैन की सिफत हो गई, और अहदुल अमरैन में तो अहद देखो मुफरद है, तो दाखिलिन भी क्या है, मुफरद, कि उन दो में से कोई एक जो है वो दाखिल हो रहा हो ऐसे इसम पर। बात समझ में आ गई, मालूम हुआ दाखिलिन दोनों की सिफत है। चुनाचे यही बतलाने के लिए देखो साहिब जामी ने ऊपर जो आया ना बाद नफ़्यिन, उसके बाद अलग दाखिलिन निकाल लिया। मतन तो क्या था, बाद नफ़्यिन औ माना नफ़्यिन दाखिलिन, माना नफी के बाद दाखिल का लफ्ज आ रहा था, बाद नफी के बाद तो दाखिल का लफ्ज नहीं था, लेकिन साहिब जामी ने बाद नफी के बाद भी दाखिल का लफ्ज निकाल लिया। किताब में नजर है, कहते हैं बाद नफ़्यिन, और वो मफूल मुतलक जिसके इस बात का इरादा किया गया है वो ऐसी नफी के बाद आए, दाखिलिन अला इस्मिन, के वो नफी दाखिल हो ऐसे इसम पर, ला यकूनुल मफूलुल मुतलकु खबरन अनहु, कि वो मफूल मुतलक उससे खबर वाके ना हो, और बाद माना नफ़्यिन, या वो मफूल मुतलक जिसके इस बात का इरादा किया गया है वो माने नफी के बाद आए ऐसा माने नफी दाखिलिन अलस्मीन के वो माने नफी दाखिल हो ऐसे इसम पर, लायकून उल मफूल उल मुतलक खबरन अनहु के मफूल मुतलक उससे खबर न हो सके, क्योंकि मफूल मुतलक तो मनसूब है वो खबर नहीं बन सकता, अगर खबर बनाना है तो फिर तो मरफू होना चाहिए भाई। बात समझ में आ गई? तो इन दोनों मिसालों में देखें मफूल मुतलक मनसूब आ रहा है वो खबर नहीं बन सकता, अगर खबर होता तो उस पर रफा आना चाहिए था। तो कहते खबर ना बन सके उसे ऐ अनज़ालिकल इस्मी उस इसम से, वह इन्नमा काला अलस्मिन और मातिन ने क्या कहा दाखिलिन अलस्मिन, वह नफी या माने नफी किस पर दाखिल हो इसम पर। मैंने बतलाया था आपको यह इसम की कैद क्यों लगाई, फेल को निकालने के लिए वही जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वह इन्नमा काला अलस्मिन और मातिन ने अलस्मिन कहा लिया नहू लौ दखला अला फेलिन, इसलिए क्योंकि वह नफी या मायने नफी अगर फेल पर दाखिल हो, नहू मिसाल के तौर पर मा सिर तु इल्ला सैरन, देखा हर्फ नफी सिर तु फेल पर दाखिल है, वह इन नमा सिर तु सैरन, इसी तरह इन नमा माने नफी देखो सिर तु फेल पर दाखिल है तो ला यकून मिन हू, तो फिर यह इसमें से नहीं। ये जिसके बारे में हम बहस कर रहे हैं, हम किसके बारे में बहस कर रहे हैं, जहां हजफ वाजिब है कियासी तौर पर यह उसमें से नहीं। बात किसकी चल रही है? बाज जगह हजफ वाजिब होता है बाज जगह, और यह हजफ कियासी है यानी जाब्ते के मुताबिक है। तो अगर यह नफी या माने नफी फेल पर दाखिल हो तो फिर यह इस बहस से नहीं, यह इसे निकल जाएगा, क्योंकि जब नफी किस पर दाखिल है फेल पर तो फेल तो मजकूर हो गया। इसी तरह माने नफी किस पर दाखिल है फेल पर, जब दाखिल है तो फेल तो जिक्र हो गया, हालांकि हम तो बात उस फेल की कर रहे हैं जिसको हजफ करना वाजिब है भाई। देखो मा सिर तु इल्ला सैरन, देखो ये सिर तु फेल तो जिक्र है और हम तो किसकी बात कर रहे हैं जिस फेल को हजफ करना वाजिब है। इसी तरह इन नमा सिर तु सैरन, यहां भी फेल जिक्र है। तो कहते हैं इस सूरत में ला यकून मिन हु ये उसमें से नहीं होगा, वह इन नमा व सफल इसम भी अल्ला यकून अल मफूल उल मुतलक खबर अनहु। भाई मातिन ने क्या कैद लगाई कि वह मफूल मुतलक उस इसम से खबर न बन सके, क्यों? कहते हैं इसलिए क्योंकि वह मनसूब है, अगर खबर होता तो फिर तो क्या होना चाहिए था, मरफू होना चाहिए था। यही बयान कर रहे हैं। कहते हैं वह इन नमा व सफल इसमा और मातिन यानी साहिब काफिया ने इसम को मौसूफ किया भी अन ला यकून अल मफूल उल मुतलक खबरन अनहु, कि वह मफूल मुतलक उससे खबर न हो सके, लिया नहु लौ काना खबरन अनहु, इसलिए क्योंकि अगर यह मफूल मुतलक उससे खबर हो सके, नहु मिसाल के तौर पर मा सैरी इल्ला सैरुन शदीदुन, नहीं है मेरा चलना मगर सख्त चलना शदीद चलना, लकान मरफूअन अलल खबरियती, फिर तो वो मफूल मुतलक जो है मरफू होता खबर होने की बिना पर, मनसूब न होता। तवज्जो है, आगे देखिए भाई, अव वकाल मफूल उल मुतलक मुकर्ररन, ये दूसरी जगह आ गई, या वो मफूल मुतलक जो है मुकर्रर वाके हो यानी उसमें तकरार हो दो दफा वाके हो। तवज्जो है, अव वकाल मफूल उल मुतलक मुकर्ररन, या वो मफूल मुतलक मुकर्रर वाके हो। भाई ये दूसरी जगह साहिब काफिया जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसको भी पहली जगह के साथ ही जिक्र कर दिया, पहली जगह के साथ ही जिक्र कर दिया कि वो मफूल मुतलक मुकर्रर वाके हो भाई, हालांकि ये बाकायदा अलग जाबता है। और चूंकि ये अलग जाबता है, चुनाचे देखो साहिब काफिया की जरा इबारत देखो, औ वका मुकर्ररन, या वो मफूल मुतलक, मतन बतला रहा हूं मतन देखो, औ वका मुकर्ररन, या वो मफूल मुतलक मुकर्रर वाके हो, ये वका को साहिब काफिया ने दोबारा जिक्र किया, हालांकि साहिब काफिया तो कलाम को मुख्तसर से मुख्तसर करते हैं, ये पीछे जिक्र हो गया था मा वका मुस्बतन, तो वका एक दफा जिक्र था तो यह मुस्बतन पर क्या करते, हमल कर देते और यूं कहते औ मुकर्ररन, लेकिन यह वका का लफ्ज दोबारा जिक्र किया, यह इशारा कर दिया साहिब काफिया ने कि यह अलग कानून है, यह दूसरी जगह है, यह उसी की तफसील नहीं है, यह अलग जाबता है भाई। बात समझ में आ गई, इसलिए वका का लफ्ज दोबारा लाए। कहते हैं औ वकाल मफूल उल मुतलक मुकर्ररन, और या वो मफूल मुतलक जो है वह मुकर्रर हो। भाई देखिए नीचे, इसी के नीचे सतर में है, नहु दुक्कतिल अर्जु दक्कन दक्का, दुक्कतिल अर्जु दक्कन दक्का, जमीन को रेजा रेजा कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला क्यामत की हौलनाकियां बयान फरमा रहे हैं कि जमीन को रेजा रेजा कर दिया जाएगा। अब देखो इसके अंदर मफूल मुतलक दो दफा आया, दक्कन दक्का, दो दफा आया। कौन से मकामात जिक्र हो रहे हैं जहां मफूल मुतलक के फेल को हजफ करना वाजिब है, हालांकि यहां दुख का तिल अर्जू, देखो फेल जिक्र है, फेल जिक्र है। तो साहिब काफिया पर एतराज होता था, आपने हमें क्या कहा, औ वका मुकर्ररन या मफूल मुतलक मुकर्रर है, मालूम वहां भी हजफ वाजिब है, हालांकि हमने कुरान से मिसाल दिखा दी कि वहां देखो हजफ नहीं हुआ है। तो उसका जवाब साहिब जामी दे रहे हैं आगे कि भाई अब जाब्ता पूरा जिक्र नहीं किया, साहिब काफिया ने मुख्तसर इबारत जिक्र कर दी, कुछ माकबल से मफहूम हो रहा था इसलिए आगे उसको दोबारा जिक्र नहीं किया। यह जाब्ता पूरा किस तरह है वो साहिब जामी आगे जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं औ वकअल मफूलुल मुतलक मुकर्ररन या मफूल मुतलक मुकर्रर वाके हो ऐफी मौज़िउल खबरी, यानी वो मफूल मुतलक मुकर्रर वाके हो खबर के मकाम में, कहां पर, खबर के मकाम में, आनिस्मिन ऐसे इसम से, ला यसिहु वुकूउहु खबरन अनहु, कि इस मफूल मुतलक का उससे खबर होना सही ना हो। तवज्जो है, कैद बढ़ा दी कि मफूल मुतलक मुकर्रर हो और कहां पर हो, खबर के मकाम में हो और उसका खबर बनना सही ना हो। माकबल में एक इसम भी गुजरा हो वो मुब्तदा है और ये उसके खबर के मकाम में आया है लेकिन इसका उसके लिए खबर बनना सही ना हो क्योंकि इस पर नसब आ रहा है, हालांकि खबर तो मरफू होती है। तो पूरा जाब्ता क्या हुआ कि मफूल मुतलक मुकर्रर आए और किस जगह पर आए, खबर के मकाम में आए और एक ऐसे इसम के बाद आए कि वो इसम तो मुब्तदा है और ये उसके खबर के मकाम में है लेकिन ये उसके लिए खबर बन नहीं सकती। अब जब ये जाब्ता लगा दिया, अब वो दुख का तिल अर्जू दक्कन दक्का वाला एतराज खत्म, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि वो मफूल मुतलक जो मुकर्रर है खबर के मकाम में आए और यहां तो मुब्तदा माकबल में है ही नहीं, दुख का तिल अर्जू फेल मजहूल है और नाइब फाइल है, यहां कोई मुब्तदा जिक्र ही नहीं है कि जिसके खबर के मकाम में दक्कन दक्का वाके हुआ हो। बात समझ में आ गई, लिहाजा ये एतराज आप नहीं कर सकते। तो कहते हैं ऐफी मौज़िउल खबर अन इस्मिन ला यसिहु वुकूउहु खबरन अनहु, यानी वो मफूल मुतलक मुकर्रर वाके हो एक ऐसे इसम से खबर के मकाम में कि उस इसम से इसका खबर होना सही ना हो, फला यरिदु नहु दुक्कतिल अर्जु दक्कन दक्का, लिहाजा एतराज वारिद नहीं होता दुक्कतिल अर्जु दक्कन दक्का जैसा। वह इन्नमा जमा बैना जाबिता तैनी, भाई सवाल, जब ये अलग जाबता है तो साहिब काफिया ने इकट्ठा क्यों जिक्र किया, वजह यह कि साहिब काफिया के पास अल्फाज कम होते हैं, वो चाहते हैं मैं मुख्तसर से मुख्तसर लफ्जों में लंबी से लंबी बात कर दूं। तो चूंकि कुछ बातें पहले जाबते में जिक्र हो गई थी, क्या पहले जाबते में क्या था कि वो मफूल मुतलक खबर के मकाम में हो और उसका खबर बनना सही ना हो, ये जो मफूल मुतलक मुकर्रर आया ये भी कहां आएगा, खबर के मकाम में और इसका खबर बनना सही नहीं, तो ये उसके साथ इस बात में शरीक था कि ये दोनों किस्में जो है मफूल मुतलक की खबर के मकाम में आती हैं और इनका खबर बनना सही नहीं होता, यानी इनसे पहले मुब्तदा आता है और फिर ये उसके बाद आती हैं लेकिन इनका खबर बनना सही नहीं होता। तो कहते हैं वह इन्नमा जमा बैना जाबिता तैनी, और साहिब काफिया ने दोनों जाब्तों को जमा फरमा दिया यानी इकट्ठा कर दिया, लिश्तेराक ही मा, इस वजह से कि दोनों जाब्तों में इश्तेराक है, फिल वुकू बादस मिन ला यकूनु खबरन अनहु, इस बात के अंदर कि वो मफूल मुतलक वाके होते हैं एक ऐसे इसम के बाद, ला यकूनु खबरन अनहु, जिसे वो खबर न हो सके। भाई बात समझ में आ रही है जी, तो जाब्ता समझ में आ गया, एतराज जवाब समझ में आया, एतराज ये कि साहिब काफिया ने दोनों जाब्तों को इकट्ठा क्यों जिक्र कर दिया। तवज्जो है, मैंने आपको बतलाया कि साहिब काफिया ने जो कहा ना औ वका मुकर्ररन, ये वका के जरिए इशारा तो कर दिया कि ये अलग जाब्ता है क्योंकि एक दफा वका पीछे जिक्र हो चुका था, दोबारा वका लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन साहिब काफिया दोबारा वका लाए यही बतलाने के लिए कि ये जो आगे बात हो रही है ये उसी जाबते के साथ नहीं है, ये अलग जाबता है कि मफूल मुतलक मुकर्रर वाके हो। भाई तो साहिब काफिया ने वाका जिक्र करके इस बात की तरफ इशारा तो कर दिया कि यह अलग जाबता है, लेकिन अलग जाबते के तौर पर जिक्र नहीं फरमाया, किस तरह कि यहां वो हर जाब्ते के शुरू में फरमा रहे वमीन हा वमीन हा वमीन हा, लेकिन इसके लिए उन्होंने वमीन हा मा वका नहीं फरमाया, अलबत्ता इशारा कर दिया वका का लफ्ज लाकर के ये अलग जाब्ता है। और क्यों दोनों को इकट्ठा जिक्र किया, अलग जाब्ते के तौर पर क्यों नहीं जिक्र किया? इसलिए क्योंकि दोनों जाब्तों में इश्तराक है इस बात के अंदर कि दोनों जाब्तों के अंदर जो मफूल मुतलक जिक्र हो रहा है वह एक ऐसे इसम के बाद है जिससे उसका खबर होना सही नहीं। तो कलाम को मुख्तसर करने के लिए साहिब काफिया ने इसी के साथ मिलाकर दूसरा जाब्ता भी जिक्र कर दिया। माना समझ में आ गया? नहु मिसाल के तौर पर मा अंत इल्ला सैरन, आप तो घूमते ही रहते हैं या आप तो चलते ही रहते हैं, सफर में रहते हैं। ऐ तसीरु सैरन, देखो फेल महजूफ निकालकर बतला दिया, ऐ तसीरु सैरन, यहां तसीरु फेल महजूफ है और इसका हजफ वाजिब है। वमा अंत इल्ला सैरल बरीद, आप नहीं चलते मगर एक मंजिल के चलने के बराबर, आप तो नहीं चलते मगर एक मंजिल के बराबर ही, एक मंजिल के बराबर ही चलते हैं। याद रखो बरीद, बरीद आम अरबी जुबान में डाक को कहते हैं, ये जो डाक का निजाम है, ये खतूत वगैरह इधर उधर भेजे जाते हैं। और इसी तरह बरीद जो दो मंजिलों के दरमियान फासिला है उसको भी बरीद कहते हैं। कदीम जमाने में सफर का क्या तरीका था कि सुबह सुबह काफिले निकलते थे, सुबह सुबह अंधेरे में चल पड़ते और फिर सुबह 9-10-11 बजे तक ये सफर करते, फिर अब धूप तेज होने लगती और लोग भी थक जाते, कई घंटे सफर कर लिया तो फिर पड़ाव डाल देते थे, फिर खाने पीने वगैरह की तैयारी शुरू हो जाती, फिर अगले दिन दोबारा फजर के बाद फिर काफिला चल पड़ता और फिर सुबह 10-11 बजे तक सफर होता और फिर पड़ाव डाल दिया जाता। तो ये जो एक दिन में फासला तय किया जाता था ये कोई 20-25 किलोमीटर, ये बास पैदल होते, बास कोई किसी के पास सवारी होती तो ये 20-25 किलोमीटर हर रोज वो सफर तय करते थे या इसके लगभग भाई। तो इसको एक मंजिल कहते हैं, क्या कहते हैं? ये जो एक दिन में सफर किया जाता है इसको एक मंजिल कहते हैं और इसी का नाम बरीद है, बरीद है। तो कहते हैं वमा अंत इल्ला सैरल बरीद, आप नहीं चलते मगर एक मंजिल के चलने के बराबर। मुखातब कहता है भाई मैं तो 2 या 3 मंजिलें चल लेता हूं, आप उसको कहते हैं नहीं, मा अंत इल्ला सैरल बरीद, आप तो नहीं चलते मगर एक मंजिल के बराबर ही, एक मंजिल के बराबर ही चलते हैं। ऐ तसीरु सैरल बरीदी, यानी आप बरीद के मिसल एक मंजिल के बराबर चलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई भाई? सवाल कि साहिब काफिया तो बात मुख्तसर करते हैं, यहां फिर इन्होंने दो मिसालें क्यों जिक्र की? एक मिसाल जिक्र कर देते मा अंत इल्ला सैरन, लेकिन दो जिक्र की, मा अंत इल्ला सैरन और व मा अंत इल्ला सैरल बरीद। तो आपको बतलाएंगे साहिब जामी कि ये दो मिसालें साहिब काफिया ने इसलिए जिक्र की कि वो बतलाना चाहते हैं कि ये जो मफूल मुतलक हम जिक्र कर रहे हैं ये नकेरा भी हो सकता है और मारिफा भी। सैरन ये नकेरा है और सैरल बरीद ये मारिफा है, क्योंकि सैर की इजाफत हो रही है अलबरीद की तरफ और वो मुआरफ बिल्लाम है, मारिफा है, और मारिफा की तरफ जो मुजाफ हो जाए वो भी क्या बन जाता है? मारिफा। तो क्या बतलाना चाहते हैं कि ये मफूले मुतलक नकेरा भी हो सकता है और मारिफा भी, या ये बतलाना चाहते हैं, ये बतलाना चाहते हैं कि यह मफूले मुतलक मुब्तदा का अपना फेल भी हो सकता है या मुब्तदा के फेल को इसके साथ तशबीह दी गई हो, ऐसा भी हो सकता है, यह मुब्तदा का अपना फेल भी हो सकता है या मुब्तदा के फेल को इसके साथ तशबीह दी गई हो, यह ऐसा भी हो सकता है। देखो गौर करो जरा, मा अंत इल्ला सैरन, आप नहीं हैं मगर घूमते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, यह किसका फेल है? मुखातब का ही फेल है, आप चलते हैं, आप चल। और दूसरी में देखो वमा अंत इल्ला सैरल बरीद, और आप नहीं चलते रहते इल्ला सैरल बरीद मगर एक मंजिल के बराबर, यानी आपका चलना किसके मिसल है? एक मंजिल चलने के मिसल है। मालूम हो मुखातब के फेल को सैरे बरीद के साथ तशबीह दी जा रही है। जैसे मैं कहता हूं जलस्तु जिलसा तल कारी, क्या माना? मैं कारी का बैठना बैठा, कारी का तो अपना फेल है, हां मैं अपने बैठने को उसके साथ तशबीह दे रहा हूं, जलस्तु जिलसा तल कारी, मैं कारी की तरह बैठा भाई। तो यहां पर भी वमा अंत इल्ला सैरल बरीद, कि आप नहीं चलते मगर एक मंजिल के मिसाल, देखो उसके साथ तशबीह दी जा रही है। तो दो मिसालें क्यों जिक्र की?
कि यह बतलाने के लिए कि ये मफूल मुतलक जो है नकिरा भी आ सकता है और मारिफा भी, और या ये बतलाने के लिए कि ये मफूल मुतलक मुब्तदा का अपना फेल भी हो सकता है या इसके साथ मुब्तदा के फेल को तशबीह दी गई हो, या ऐसा भी हो सकता है, या इस वजह से दो मिसालें जिक्र की कि ये जो मफूल मुतलक है मुजाफ भी हो सकता है या गैर मुजाफ भी। सैरन गैर मुजाफ है और सैरल बरीद मुजाफ है, तो ये दोनों तरह हो सकता है। बात समझ में आ गई। देखिए भाई, तो कहते हैं नहु मा अंत इल्ला सैरन ऐ तसीरु सैरन व मा अंत इल्ला सैरल बरीदी ऐ तसीरु सैरल बरीदी, यानी आप एक मंजिल के मिसल चलते हैं। हाजानी मिसालानी लिमा वका मुस्बतन बादा नफीन, ये दोनों मिसालें हैं उस मफूले मुतलक की जो वाके हुआ है किसके बाद, जो वाके हुआ है मुस्बत यानी जिसके जिसके इस बात का इरादा किया गया है, बादा नफीन और किसके बाद है, नफी के बाद, एक माना नफी के बाद भी आएगा, उसकी मिसाल आगे आने वाली है, तो ये नफी की मिसाल थी। वह इन नमा और अदा मिसाल इनी, और मातिन जो हैं वो दो मिसालें लेकर आए तंबीहन इस बात पर तंबीह करने के लिए कि आला अन अल इस्मल वाकया मौके अल खबरी, कि वो इसम जो खबर के मकाम में वाके है यानी वो जो मफूले मुतलक है, यन कसिमु इलन नकेरती वल मारिफती, वो तकसीम होता है नकेरा और मारिफा की तरफ यानी दोनों तरफ वो आ सकता है, और इला मा हुआ फ़िअल मुब्तदई, या वो तकसीम होता है इला मा हुआ फ़िअल लिल मुब्तदई, उस किस्म की तरफ जो मुब्तदा का फेल हो, वह इला मा युशब्बहु बिही फ़िअलुहु, या उस किस्म की तरफ कि जिसके साथ मुब्तदा के फेल को तशबीह दी गई हो, और इला मुफ्रदिन व मुजाफिन, या तकसीम होता है इला मुफ्रदिन व मुजाफिन, मुफ्रद और मुजाफ की तरफ, यानी ये मफूले मुतलक मारिफा भी आ सकता है और नकिरा भी, मुब्तदा का फेल भी हो सकता है या उसके फेल को उसके साथ तशबीह दी गई हो, ऐसा भी हो सकता है, और नीज मुफ्रद भी हो सकता है और मुजाफ भी हो सकता है। मुफ्रद का क्या माना, यानी जो मुजाफ ना हो। भाई व इन नमा अंत सैरन, ये किसकी मिसाल है, माना नफी के बाद है। कहते हैं ऐ तसीरु सैरन मिसालुन लिमा वका बादा माना नफी, ये मिसाल है उस मफूल मुतलक की जो वाके हुआ है माना नफी के बाद। व जैदुन सैरन सैरन ऐ यसीरु सैरन, देखा ये वो मफूल मुतलक है जो मुकर्रर आया है और किसके बाद है, ये अलग जाब्ता जिक्र हुआ था, यहां नफी या माने नफी की बात नहीं है। औ वका मुकर्ररन, या वो मफूल मुतलक मुकर्रर आए और एक ऐसे इसम के बाद आए जिससे ये खबर वाके न हो सके, जैसे वज़ैदुन सैरन सैरन, देखो इसमें न नफी है न माने नफी है, एक इसम के बाद आया है और मफूल मुतलक मुकर्रर है और इसका उससे खबर होना सही नहीं। तो कहते हैं वज़ैदुन सैरन सैरन अय्यसीरु सैरन मिसालुन लिमा वका मुकर्ररन, ये मिसाल है उस मफूले मुतलक की जो मुकर्रर वाके हुआ है। भाई ये दो मिसालें जिक्र की, ये दो मिसालें जिक्र की, इनके अंदर फेल को हजफ करना वाजिब है। ये वो कियासी मकामात चल रहे हैं जहां मफूले मुतलक के फेल को हजफ करना वाजिब है। भाई क्या वजह है, यहां हजफ करना वाजिब क्यों है, वाजिब क्यों है, वजह यह कि इस किस्म के मकाम में यह जो हसर जिक्र किया जाता है, हसर और तकरार, पहले जाब्ते में क्या था, मा और इल्ला और इन्नमा आए थे हसर और तख़सीस के लिए आए थे, क्योंकि इस किस्म का मकाम जो है जिसमें हसर है यानी तख़सीस है या जिसके अंदर तकरार है, इन दोनों के अंदर फेल का हजफ वाजिब है, क्योंकि यहां पर जो मफूले मुतलक को जिक्र किया जाता है वो दवाम और लुजूम के लिए, तवज्जो से कीमती बात जिक्र कर रहा हूं, यहां जो मफूले मुतलक जिक्र किया जाता है किस लिए, दवाम के लिए, कि ये उसकी दायमन सिफत है, हर वक्त उसके साथ रहती है, उसे जुदा नहीं होती और लाजिम है, ये दायमन उसके साथ रहती है और उसके साथ लाजिम है, उससे जुदा नहीं होती। भाई तो दवाम और लुजूम पर दलालत के लिए फेल को हजफ करना पड़ेगा, क्योंकि फेल मैंने आपको बतलाया था हुदूस और तजद्दुद के लिए आता है। हुदूस और तजद्दुद का क्या माना, एक चीज का होना, यानी पहले नहीं थी हुई और फिर गुजर गई, तो फेल हुदूस और तजद्दुद पर दलालत करता है। इसका तो माना है एक दफा एक चीज हुई और गुजर गई बस। कभी कभार फेल मुजारे इस्तेमरार के लिए भी आ जाता है, इस्तेमरार क्या, एक चीज का बार बार होना, एक दफा हुई गुजर गई, फिर हुई गुजर गई, फिर हुई गुजर गई, तो वही हुदूस और तजद्दुद, उसमें अगर तसलसल आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, इस्तेमरार। तो फेल मुजारे कभी कभार इस्तेमरार के लिए भी आ जाता है, लेकिन फेल की वजह हुदूस के लिए ही है। फेल को किस लिए वजह किया गया है? हुदूस के लिए, कि एक चीज हुई और गुजर गई, यह बतलाने के लिए। और यहां पर यह जो हसर जिक्र किया जा रहा है मा और इल्ला या इन्नमा के साथ, यह जो तकरार जिक्र किया जा रहा है, उसका मकसद क्या है? दवाम बतलाना मकसद है कि यह सिफत मुब्तदा के साथ दायमी है भाई, और यह उसके साथ लाजिम है, उससे जुदा नहीं होती। और फेल, फेल तो दवाम पे नहीं दलालत करता, फेल तो तजद्दुद और हुदूस पे, कि एक दफा चीज हुई और गुजर गई। लिहाजा यहां उस दवाम पर तसरीह करने के लिए फेल का हज़्फ वाजिब है, क्योंकि फेल को आप जिक्र करेंगे, फेल तो दवाम पर दलालत नहीं होने देगा, फेल तो तजद्दुद पर और हुदूस पर दलालत करेगा। और आप तो क्या चाहते हैं? आप तो दवाम चाहते हैं और लुजूम चाहते हैं। तो लिहाजा वो फेल जो हुदूस और तजद्दुद के लिए वजह है, उसको आप क्या कर देते हैं? हज़्फ कर देते हैं। अगरचे फेले मुजारे कभी कभार इस्तेमरार के लिए भी आता है, लेकिन असल वजह तो इसके हुदूस के लिए ही है भाई। आप क्या चाहते हैं? दवाम और लुजूम, दवाम और लुजूम बतलाना चाहते हैं, और उस दवाम और लुजूम पर आप चाहते हैं तसरीह भी हो जाए, सुनने वाले को भी पता चले कि मैं यहां दवाम का इरादा कर रहा हूं। तसरीह के लिए फिर क्या करते हैं आप? उस फेल को हजफ, तो उस फेल को इसलिए हजफ करना वाजिब है ताकि उस दवाम और लुजूम पर तसरीह हो जाए। फिर और सुनो मजीद फायदा, अगर इस दवाम और लुजूम में मुबालगा भी आप चाहते हैं, क्या मुबालगा भी आप चाहते हैं, कि खूब बढ़ा चढ़ा कर बयान करना चाहते हैं, तो फिर उसको मफूले मुतलक को मफूले मुतलक नहीं रहने देते, उसको खबर ही बना देते हैं, यानी बराह रास्त मुब्तदा पर हमल कर देते हैं। बराह रास्त, जैसे वो मिसाल आई थी जैदुन अदलुन, हम उलमा क्या फरमाते हैं कि अदल किस माना में है? आदिल, क्योंकि अदल तो मस्तर है और मस्तर तो वसफ है, मस्तर तो एक माना का नाम है, और मुब्तदा जैद जो है वो तो जात है, और वसफ का हमल तो जात पर सही नहीं। तो फिर वो क्या कहते हैं? आदल बमाने आदिल के है, कि जैद आदिल है, यानी अदल करने वाला है। जबकि उलमाए मुहक्कीकीन क्या फरमाते हैं कि अदल को कोई आदिल के माना में लेने की जरूरत नहीं, यह बतौर मुबालगा के जैद पर अदल का हमल किया गया है। क्योंकि अगर आप कहें जैद आदिल है, तो इसका तो माना यह है जैद इंसाफ करने वाला है, इसमें तो कोई मुबालगा नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि जैद बहुत ज्यादा इंसाफ करने वाला है, तो अब आप आदिलुन नहीं लाते, बल्कि क्या लाते हैं? आदलुन, जैदुन आदलुन, यानी जैद इंसाफ ही है, यानी जैद खुद ही इंसाफ है, हर चीज में वो इतना इंसाफ करता है कि उसकी अपनी जात ही क्या बन चुकी है? इंसाफ भाई। तो ये जो मस्तर का हमल जात पर किया जाता है, ये बतौर मुबालगा के होता है। तो यहां पर भी ये जो मफूल मुतलक के साथ जो तख्सीस और हसर जिक्र किया गया और तकरार किया गया, उसका ये किस लिए किया जाता है? दवाम और लुजूम पर दलालत करने के लिए। और फिर जब इस दवाम और लुजूम में मुबालगा भी करना मकसूद हो, कि और बढ़ा चढ़ा कर आप बयान करना चाहते हैं, तो फिर उस मफूल मुतलक को उस पर रफा पढ़कर बराह रास्त खबर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? खबर बना देते हैं। जैदुन सैरन सैरन, इसको बदलकर क्या बना देते हैं? जैदुन सैरुन सैरुन। देखा, वही मफूले मुतलक में तकरार था, लेकिन अब उसी को क्या बना दिया? खबर बना दिया। अब उसी दवाम और लुजूम के अंदर मुबालगा भी आ गया, हद से ज्यादा बढ़ाकर आपने, कि गोया जैद की जात ही चलना है, चल वो हर वक्त चलता ही रहता है, उसकी जात ही सैर बन चुकी है भाई। या इसी तरह मा जैदुन इल्ला सैरन था, आप इस सैरन को खबर ही बना दें। मा जैदुन इल्ला सैरुन, देखा अब आपने मफूल मुतलक को क्या कर दिया? खबर ही बना दिया, उस दवाम और लुजूम में मुबालगा करने के लिए। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, कहते वमिन हा अमीन अल मवाज इल्लती यजिबु हज़्फुल फ़िअल नासिबि लिल मफ़ूल अल मुतलक़ फ़ीहा। अच्छा भाई, ये पहले मतन मतन देखें। वमिन हा मा वक़ा, और उन जगहों में से एक वो जगह है कि जहां मफ़ूल मुतलक वाक़े हो, तफ़सीलन लि असरि मज़मूनि जुमलतिन मुतक़द्दिमतिन। जुमलतिन मुतक़द्दिमतिन, वो जुमला जो पहले गुजरा हो। तफसीलन ली असरी मजमूनी जुमलतिन मुतकद्दिमतिन, जहां पर मफूल मुतलक जो है, जुमला मुतकद्दिमा यानी वो जुमला जो पहले गुजरा है, उसके मजमून के असर की तफसील वाके हो। असर से मुराद है गरज और मकसद। असर का माना कर ले मकसद, मकसद के दूसरा मकाम वो है जहां मफूल मुतलक जो है माकबल वाले जुमले के मजमून का जो मकसद है उसकी तफसील होकर वाके हो। उसकी मैंने बताया था, एक होता है इजमाल, एक है तफसील। इजमाल में मुख्तसरन चीज को बयान किया जाता है, एक एक चीज को अलग नहीं, और तफसील में एक एक चीज को अलग अलग जिक्र किया जाता है। मसलन मैं आपसे कहता हूं मेरे तीन दोस्त हैं, ये मैंने इजमालन जिक्र किया। कौन कौन है? मैंने कोई तफसील बयान नहीं की, लेकिन इतना बता दिया मेरे तीन दोस्त हैं, सबको इकट्ठा समेट दिया तीन के अंदर। और एक सूरत यह है कि मैं उनके अलग अलग नाम जिक्र करूं कि जैद, अमर, बकर और खालिद मेरे दोस्त हैं। अब देखो मैंने तफसील बयान कर दी, एक एक फर्द को अलग अलग बयान कर दिया कि ये है मेरे दोस्त। तो यहां पर भी दूसरा मकाम वो है जहां पर मफूले मुतलक जुमला मुतकदिमा का जो मजमून है उसका जो मकसद है उस मकसद की तफसील होकर वाके हो, यानी उसके मकसद को पूरा खोल कर बयान कर दे, उसमें जितने एहतमालात हैं हर एक को अलग अलग जिक्र कर दे, तो इस मकाम पर भी उसके फेल को हजफ करना वाजिब। भाई मजमून जुमला यहां आया, मजमून जुमला किसे कहते हैं? मैं पहले बयान कर चुका, मजमून जुमला आम लफ्जों में कहो यानी जुमले में जो बात बयान की गई है। जैदुन कायमुन, इस जुमले में क्या बयान किया गया है? जैद का कयाम बयान किया गया है। तो मजमून जुमला बनाने का तरीका भी मैंने आपको बतलाया था कि जुमला इस्मिया का मजमून जुमला कैसे निकालते हैं, कि जो खबर है उसका मस्दर निकालें और मुब्तदा की तरफ मुजाफ कर दें। जैदुन कायमुन, मुब्तदा है जैद और कायमुन है खबर, खबर का मस्दर निकालें कियाम और इस कियाम की इजाफत कर दें मुब्तदा की तरफ, कियामु जैदीन, देखा जैद का कियाम, यह मजमून जुमला निकल आया। मजमून जुमला आसान लफ्जों में क्या कहेंगे? वो बात जो जुमले में जिक्र की गई है, इस जुमले में कियाम जैद जिक्र किया गया है। और दूसरी मिसाल ले लें, जैद उन फिदारी, यहां मुब्तदा कौन? जैद, और खबर क्या? फिदार। इस खबर का मस्तर निकाले, आप कहेंगे फिदार का क्या मस्तर है? भाई ये फिदार किससे मुतालिक है? साबितुन से, वो साबितुन है असल में खबर, तो साबितुन का मस्तर निकालें सुबूत और उसकी इजाफत कर दें मुब्तदा की तरफ, सुबूत उजैदीन, और बाकी जार मजरूर वगैरह को वैसे साथ जोड़ दें, सुबूत उजैदीन फिदार, जैद का घर में होना, इस जुमले में यह जिक्र है। यह तो था जुमला इस्मिया में कि खबर का मस्तर निकालें और मुब्तदा की तरफ मुजाफ कर दें तो मजमून जुमला निकल आएगा। जुमला फेलिया का मजमून जुमला कैसे निकालेंगे? उसमें भी इसी तरह है, वहां फेल और फाइल आएगा तो क्या करें? उस फेल का मस्तर निकालें और फाइल या मफूल की तरफ उसकी इजाफत कर दें। जाराबा जैदुन आमरान, जाराबा जैदुन आमरान, फेल क्या? जाराबा, इसका मस्तर निकालो जरब और इसकी इजाफत कर दो फाइल की तरफ, जरबु जैदीन, इस जुमले में क्या बयान हो रहा है? जरबु जैदीन, या मफूल की तरफ इजाफत कर दें जरबु आमरीन, इस जुमले में क्या बयान हो रहा है? जरबु आमरीन बयान हो रहा है। फेल का मस्तर निकालें और फाइल या मफूल की तरफ मुजाफ कर दें। तरीका समझ में आ गया, लेकिन दोनों में फर्क है। जब आप फाइल की तरफ इजाफत करेंगे तो यह मस्तर मारूफ होगा, जरबु जैदीन, यह मस्तर मारूफ है, और अगर आप मफूल की तरफ इजाफत करेंगे जरबु अमरीन तो फिर यह मस्तर मजहूल है। मैंने आपको बतलाया था कि अरबी जुबान में यही मस्तर जो है, यही मस्तर मारूफ भी इस्तेमाल होता है और मजहूल भी, इसीलिए गर्दानों के अंदर फेले मारूफ के बाद भी जरबान जिक्र है और फेले मजहूल के बाद भी जरबान जिक्र है। तो सवाल पैदा होता है, ये तो मुख्तसर गर्दाने हैं जहां पूरी पूरी गर्दान से एक सीगा लेते हैं, जराबा फेले माजी के 14 सीगे हैं लेकिन सिर्फ जराबा लिया, यजरीबू फेले मुजारे के 14 सीगे हैं लेकिन सिर्फ यजरीबू लिया, इसी तरह आगे जुरीबा फेले मजहूल के 14 सीगे हैं माजी के लेकिन सिर्फ जुरीबा लिया, तो एक एक सीगा ले रहे हैं क्योंकि ये मुख्तसर गर्दान है, तो फिर जराबा यजरीबू जरबान एक दफा मस्तर जिक्र हो गया, तो फिर जुरीबा यजरबू जरबान ये दोबारा मस्तर को क्यों जिक्र किया? तफसील मैंने बयान की थी कि ये जो पहला मस्तर है ये मस्तर मारूफ है
और ये जो दूसरा मस्तर है ये मस्तर मजहूल है। पहला मस्तर फेले मारूफ के बाद आया तो वो मस्तर मारूफ है, दूसरा मस्तर फेले मजहूल के बाद आया तो वो मस्तर मजहूल है। तो दरअसल उलमा आपको बतलाना ये चाहते हैं कि अरबी जुबान में मस्तर मारूफ भी आता है और मजहूल भी, और दोनों का वजन एक ही है, यानी एक ही मस्तर मारूफ के लिए भी इस्तेमाल होता है और मजहूल के लिए भी। तो यह जर्ब अगर मस्तर मारूफ हो तो इसका माना क्या, जर्ब यानी पिटाई करना, पिटाई करना, और यही मस्तर मजहूल हो जर्ब तो इसका माना है पिटाई होना, यानी जिसकी पिटाई की जाए। एक है पिटाई करना और एक है पिटाई होना, दोनों में बड़ा फर्क है। तो जर्ब ज़ैदिन, आपने मजमूने जुमला निकाला ज़रबा ज़ैदुन आमरान इसका, और फाइल की तरफ इजाफत की जर्ब ज़ैदिन, या आपने मफूल की तरफ इजाफत की जर्ब आमरीन। तो याद रखो जब फाइल की तरफ इजाफत की तो यह मस्तर मारूफ है, और जब मफूल की तरफ इजाफत की तो यह मस्तर मजहूल है। फाइल की तरफ इजाफत करें जरबु जैदिन, इसका माना क्या है, जैद का पिटाई करना। जराबा जैदुन आमरन, मजमूने जुमला क्या है, आप कहते हैं जरबु जैदिन कि इस जुमले में जैद का पिटाई करना बयान हो रहा है। और अगर आप मफूल की तरफ इजाफत करें कि इस जुमले का मजमूने जुमला क्या, आपने कहा जरबु आमरीन, मफूल की तरफ इजाफत कर दी, क्या माना जरबु आमरीन, अमर की पिटाई होना, जैद का था पिटाई करना और अमर का है पिटाई होना। फर्क समझ में आ रहा है? तो अब सवाल यह है कि हम जुमला फेलिया का मजमून जुमला निकालना चाहते हैं, जुमला फेलिया का मजमून जुमला निकालना चाहते हैं। आपने हमें क्या कहा, या फाइल की तरफ इजाफत कर दो या मफूल की तरफ, तो एक वक्त में तो एक की तरफ इजाफत हो सकती है। तो फिर हम कैसे बयान करें कि यहां इस वक्त फाइल की तरफ इजाफत करनी चाहिए या मफूल की तरफ। कहते हैं भाई उस जुमले का मकसद देख लें, वो जुमला लाने का मकसद क्या है। वो जुमले लाने का मकसद अगर यह है कि आप फाइल के बारे में बतलाना चाहते हैं तो फिर फाइल की तरफ इजाफत करो, और अगर आप मफूल के बारे में बतलाना चाहते हैं तो फिर मफूल की तरफ इजाफत करो। भाई क्या माना, फाइल बतलाना चाहते हैं मफूल। मसलन आपको इतना पता है, मैंने आपसे कहा जराबा जैदुन आमरान, आपको इतना पता था कि अमर की पिटाई हुई है लेकिन की किसने है यह आपको पता नहीं था। तो अब जब मैं लाया जराबा जैदुन आमरान, मैं किसके बारे में बतलाना चाहता हूं, आपको इतना पता था कि पिटाई किसकी हुई है, अमर की, यह तो आपको पता था लेकिन किसने की है, फाइल कौन है, वह आपको पता नहीं था। तो मैंने क्या कहा, जराबा जैदुन आमरान, तो यह जुमला मैं किसके लिए लाया, फाइल बतलाने के लिए या मफूल बतलाने के लिए, फाइल बतलाने के लिए, क्योंकि मफूल का तो आपको पता था। तो लिहाजा इस सूरत में, अगर इस सूरत में फाइल का बतलाना मकसूद था तो मजमून जुमला के अंदर फाइल की तरफ इजाफत करो कि इस जुमले में जरबु जैदिन बतलाना मकसूद है, जरबु आमरीन बतलाना मकसूद नहीं, वो तो आपको पहले ही पता थी। या दूसरी मिसाल लें, दूसरी मिसाल लें, मैंने कहा जराबा जैदुन आमरान, आपको इतना तो पता था कि पिटाई जैद ने की है लेकिन यह नहीं था पता कि जैद ने किसकी पिटाई की है। तो मैंने कहा जराबा जैदुन आमरन, तो ये जुमला लाने का मकसद क्या है, अमर के बारे में मैं बतलाना चाहता हूं कि वो जो जैद ने जर्ब की लगाई थी वो अमर को लगाई थी। तो लिहाजा अब इस जुमले का मजमून जुमला क्या होगा, जरब आमरिन, इसमें जरब अमर बयान हो रही है। बात समझ में आ गई? तो मजमून जुमला कैसे निकालते हैं, जुमला इस्मिया का मजमून जुमला इस तरह निकालते हैं कि खबर का मस्तर निकालकर मुब्तदा की तरह मुजाफ कर देंगे, और जुमला फेलिया का मजमून जुमला इस तरह निकालेंगे कि फेल का मस्तर निकालकर फाइल या मफूल की तरफ मुजाफ कर देंगे। बात समझ में आ गई? और नीज यहां देखो किताब में आया तफसीलन लि असरी मजमूनी जुमलतिन मुतकद्दिमतिन, कि वह माकबल वाले जुमले के मजमून के गरज जो है, उसका जो मकसद है उसकी तफसील बयान करे। असर का क्या माना, मकसद और गरज, और तफसील का क्या माना, यानी उसमें जितने एहतमालात हैं वह सबको जिक्र कर दे। देखो मिसाल से वजाहत होगी, जैसे भाई अल्लाह ताला का कौल है, आगे मतन में आ रहा है, मिसलो फशुद्दुल वसाका, फशुद्दुल वसाका फइम्मा मन्नम बादू व इम्मा फिदाअन, इबारत मिल गई, जैसे अल्लाह ताला का कौल है फशुद्दुल वसाका, शद्द या शुद्दू का माना है बांधना, बांधना, और वसाक कहते हैं वो चीज जिससे बांधा जाए, रस्सी या जंजीर वगैरह, उसको क्या कहते हैं, वसाक। तो अल्लाह ताला मोमिनी को हुक्म दे रहे हैं फशुद्दुल वसाका, शुद्ध, शद्द या शुद्ध से अमर क्या आएगा? शुद्ध शुद्ध, गर्दान कैसे होगी? शुद्ध शुद्धा शुद्ध। तो देखा यह जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, अमर है, फशुद्ध, और इसके अंदर यह वो फाइल है जमा मुजक्कर हाजिर की। बस तुम लोग बांध दो, बस तुम लोग बांध दो अलवसाका, बंदों को, बंद को, तुम बंद को बांध दो, यानी मुश्रिकीन के साथ अगर तुम्हारी जंग हो और उनको गिरफ्तार कर लो तो उसके बाद उनके बंद बांध दो, यानी उनको रस्सी वगैरह या चीजों से उनको बांध दो। फइम्मा मन नंबादू, फिर उसके बाद या तो एहसान करना है, आई फइम्मा तमुन्नूना मन नंबादू, या तो बाद में तुम लोग फिर एहसान करोगे, यानी वैसे ही छोड़ दोगे इनको एहसान करते हुए। वह इम्मा फिदा अन आई वह इम्मा तुफ दो ना फिदा अन, या फिर तुम फिदिया ले लोगे। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि तुम लोग क्या कर लो, जंग के अंदर जब मुश्रिकीन को कैदी बना लो तो बंद बांध लो, यानी उनको मजबूती से बांध लो, फिर उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, या तो एहसान करते हुए उनको वैसे ही छोड़ दोगे या तुम फिर उनके बदले फिदिया ले लोगे। तो यहां पर देखो फशुद्दुल वसाक, ये जुमला आया शुद्दुल वसाक, ये माकबल में जुमला आया, और उसके बाद आया फइम्मा मन्नन, ये मन्नन क्या है, ये मफूल मुतलक है, इसके फेल को हजफ करना वाजिब। इसी तरह वइम्मा फिदाअन, ये फिदाअन भी क्या है, ये भी मफूल मुतलक है, इसके फेल तुफदूना को हजफ करना वाजिब है, तवज्जो है। और ये जो मफूल मुतलक है ये तफसील बयान कर रहा है, तफसील बयान कर रहा है किस चीज की, किस चीज की तफसील बयान कर रहा है, माकबल में जो जुमला आया था फशुद्दुल वसाक, उस जुमले का जो मजमून था उसकी गरज की, उसके मकसद की तफसील बयान कर रहा है। उसके जुमले का मजमून जरा निकालें, फशुद्दुल वसाक, फेल क्या है शुद्दु, इसका मस्तर निकालें, शद्द या शुद्दु शद्दन, तो शद्दुन इसका मस्तर है, और आगे मफूल की तरफ इसकी इजाफत कर दें, शद्दुल वसाक, बंद बांधना, बंद बांधना, यह है मजमून जुमला, इस जुमले में यह जिक्र हुआ है। और इसका मकसद क्या है, यह बंद बांधने का मकसद क्या है, गरज क्या है, कि बाद में या तो एहसान करते हुए छोड़ देना या फिदिया लेकर छोड़ देना। तो देखो माकबल में जुमला या फशुद्दुल वसाक, इस जुमले का जो मजमून है उसकी गरज और मकसद क्या है, उसकी तफसील आगे आ रही है। तफसील यानी उसमें जो एहतमाल थे कि या तो तुम एहसान करते हुए छोड़ दोगे या फिदिया लेकर छोड़ दोगे। तो यह बंद बांधने का मकसद क्या था, एहसान करके वैसे ही छोड़ना या फिदिया लेकर छोड़ना, देखो यह गरज है। और इसकी तफसील आ गई, यानी उस गरज के अंदर जो एहतमालात थे वो जिक्र कर दिए भाई, जो मकासिद थे उसके अंदर वो सारे जिक्र कर, बात समझ में आ गई। क्या बात हुई कि वो मफूल मुतलक जो माकबल में आने वाले जुमले के, माकबल में आने वाला जो जुमला है उसका जो मजमून है, उस मजमून की जो गरज और मकसद है उसकी तफसील बयान करे, तो उस मफूल मुतलक के फेल को हजफ करना वाजिब है। जैसे यहां पर मन्नन और फिदाअन ये तफसील बयान कर रहे हैं, माकबल में जो जुमला आया था उसके मजमून के जो मकसद था, जो उसका फायदा था, उस फायदे की तफसील बयान कर रहे हैं, लिहाजा इनके फेल को हजफ करना वाजिब है। बात समझ में आ गए? अच्छा, तो लिहाजा ये उसकी तफसील बयान कर रहा है, तो इनके फेल को हजफ करना वाजिब है। तफसील समझ में आ गई, अब देखिए किताब पर कहते हैं, वमीन हा अई मिनल मवाज़िउ अल्लती यजिबु हज़्फुल फ़िअलिन नासिब लिल मफ़ऊलिल मुतलक़ फ़ीहा, और उन जगहों में से जिनके अंदर मफूल मुतलक को नसब देने वाले फेल को हजफ करना वाजिब है, उनमें से मा वका अई मौज़िउ मफ़ऊल मुतलक़िन वका, वो जगह है जहां मफूल मुतलक वाक़े हो, तफसीलन ली असरी मजमूनी जुमलतिन मुतकद्दिमतिन, कि वो तफसील हो उस गरज की जो माकबल में आने वाले जुमले के मजमून की है। या आखिर से तर्जमा करें, तफसीलन ली असरी मजमूनी जुमलतिन मुतकद्दिमतिन,
कि जहां मफूल मुतलक जो है जुमला मुतकदिमा के मजमून के जो मकसद है उसकी तफसील होकर वाके हो। माकबल में जो जुमला है, तर्जमा में आखिर से कर रहा हूं, माकबल में जो जुमला है उसके मजमून की जो गरज है उसकी तफसील होकर वाके हो, वो मफूल मुतलक उस गरज की तफसील होकर वाके हो तो उसके फेल को हजफ करना वाजिब है। कहते हैं वल मुराद बि मजमून इल जुमलती, और मजमून जुमला से मुराद जो है मस्दरुहल मुजाफ इलल फाइल अविल मफूली, कि उस फेल का जो मस्दर है वो मुजाफ हो रहा हो इलल फाइल अविल मफूली, फाइल या मफूल, कि वो मस्दर मुजाफ हो फाइल या मफूल की तरफ, यह है मजमून जुमला। वबी असरी ही और मजमून के असर से क्या मुराद है, कहते हैं वबी असरी ही और उसके असर से मुराद जो है गरजुहुल मतलूब मिनहू, उस मजमून जुमला से जो गरज और मकसद मतलूब है वो मुराद है। वबी तफसील असरी और तफसील असर से मुराद जो है बयान अनवाहिल मुहतमलती, बयान उन अनवा का जिसका उनमें इहतेमाल है, जितनी अनवा का उसमें इहतेमाल है उनको बयान करना। मिसलु कौली ही ताला, जैसे कि अल्लाह ताला का कौल है फशुद्दुल वसाका, पस तुम बंद बांध लो, फइम्मा मन्नम बादु अइबाद शद्दिल वसाकी, तो फिर या तो एहसान करना है बादु अइबाद शद्दिल वसाकी, बंद बांधने के बाद, व इम्मा फिदा अन या फिदिया लेना है, फकौलुहु तो अल्लाह ताला का जो कौल है फशुद्दुल वसाका, ये जो कौल है जुमलतुन, ये ऐसा जुमला है मजमूनुहा शद्दुल वसाक, इसका मजमून शद्दुल वसाक है, वल गरजुल मतलूब मिन शद्दिल वसाक, और वो गरज जो मतलूब है शद्द वसाक से इम्मल मन्नु अविल फिदाउ, या तो वो एहसान करना है या फिदिया लेना है। फफस्सलल्लाहु सुबहानहु हादल गरजल मतलूबा, तो अल्लाह ताला ने तफसील बयान की इस गरज मतलूब की बिकौली ही, अपने इस कौल के जरिए, यानी इसके जरिए अल्लाह ने उसकी तफसील बयान की। फइम्मा मन्नम बादु व इम्मा फिदा अन, तो फिर या तो एहसान करना है बाद में या फिदिया लेना है। ऐ इम्मा तमन्नून मन्नम बाद अश्शद्दी, यानी या तो तुम एहसान करोगे बांधने के बाद, व इम्मा तुफदून फिदा अन, या तुम फिदिया कबूल करोगे या फिदिया कबूल करोगे। इसको तफदूना ना पढ़ना भाई, तुफदूना, क्योंकि मुजर्रद से पढ़े तो इसका माना होता है फिदिया देना, फदा यफदी का क्या माना फिदिया देना, और बाबे इफ़ाल से पढ़े अफदा युफदी तो फिर इसका माना है फिदिया कबूल करना, यानी फिदिया लेना, ताकि तुम लोग क्या करो बाद में फिदिया कबूल करो। भाई यहां तक बात समझ में आ गई, तो भाई यहां पर यह आया फइम्मा मन्नम बादु ऐ बादा शद्दिल वसाकी, भाई बादु आया, और देखो बादु यहां पर मबनी है, कैसे पता चला आयत के अंदर फइम्मा मन्नम बादु व इम्मा फिदा अन, मैंने अलामत जिक्र की थी कि ये बादु पर तो तनवीन आ सकती है, और लेकिन फिर भी यहां तनवीन नहीं आई, मालूम हुआ ये मबनी अलज़म है, और मबनी है, और मबनी का इराब कैसे बताते हैं महल्लन, तो ये महल्लन मफ़ूल फी है, ये मनसूब है भाई, मनसूब है। और आपने पढ़ा है कि कबलू और बादू जो हैं ये हमेशा मुजाफिले चाहते हैं, कबलू का माना पहले, भाई किससे पहले, आगे मुजाफिले चाहिए, बादू का माना बाद में, भाई किसके बाद में, आगे मुजाफिले चाहिए, कि बाद ज़ैदिन और बाद आमरिन और बाद बकरिन, और इसके इस्तेमाल के तरीके कितने हैं तीन, कि ये मुजाफिले चाहते हैं, कभी मुजाफिले साथ जिक्र होता है, तो इस सूरत में फिर इन पर नसब आएगा, जैसे क्योंकि ये मफूल फी हैं और मफूल फी पर नसब आता है, और बाद सूरतों में फिर इनके मफूल फी को हजफ कर लेते हैं, जब हजफ कर लेते हैं तो फिर वो नीयत में अलबत्ता मुराद होता है, नीयत में तो मुराद है और लफ्जों से आपने हजफ कर लिया तो इसका नुकसान हुआ, लिहाजा इस सूरत में ये मबनी अला ज़म होता है, मबनी अला ज़म। और एक सूरत यह कि हजफ कर दिया और उसको फिर नसिया मनसिया कर दिया, यानी बिल्कुल भुलाया हुआ कि आगे गोया इसके लिए मुजाफिले चाहिए ही नहीं, जब आगे मुजाफिले चाहिए ही नहीं तो गोया इसका कोई नुकसान ही नहीं, जब नुकसान नहीं हुआ तो भी ये उसी तरह मुआरब रहेगा और फिर बादन पढ़ेंगे तनवीन के साथ क्योंकि यह मफूल फी है। हां अलबत्ता एक सूरत में यह मबनी बनेगा जब आपने लफ्जों से इसका मुजाफिले हजफ कर दिया लेकिन नीयत में अभी भी है। चुनाचे मसलन मैं आपसे कहता हूं जा अनी जैदुन बाद अमरिन, क्या तर्जमा, जैद मेरे पास आया किसके बाद, अमर के बाद। अब मैं इसके मुजाफिले को हजफ कर देता हूं लफ्जों से, जा अनी जैदुन बादु, अब मबनी हो गया। अब तर्जमा करें आया मेरे पास, हां देखा आया मेरे पास जैद बाद में, नहीं भाई ये तर्जमा नहीं सही क्योंकि मुजाफिले लफ्जों से आपने बेशक हजफ किया है लेकिन नीयत में अभी भी है, तो आया जैद बाद अमरिन, तर्जमा उसी तरह करेंगे। लफ्ज क्या मैंने बोला, जा अनी जैदुन बादु, जैद मेरे पास अमर के बाद आया, भाई अमर तो लफ्जों में नहीं जिक्र लेकिन बादु का मबनी होना बतला रहा है कि यहां एक लफ्ज हजफ हुआ है नीयत में है, तो तर्जमे में उसको फिर जिक्र करेंगे। बात समझ में आ गई, इसीलिए देखो साहिब काफिया ने क्या फरमाया, फइम्मा मन्नम बादु, ये मबनी अला जम है, बतला दिया कि इसका मुजाफिल महजूफ है और उसको आगे जिक्र कर दिया, और जब जिक्र करेंगे तो अब बादा मबनी हो जाएगा, आई बादा शद्दिल वसाकी, यानी बांध बांधने के बाद जो है फिर या तो एहसान करोगे या फिर फिदिया लेकर छोड़ दोगे। भाई बात समझ में आ गई। और यहां पर फेल को हजफ करना क्यों वाजिब है, वजह यह, यहां पर फेल को हजफ करना इसलिए वाजिब है क्योंकि माकबल वाला, क्योंकि माकबल में जुमला जिक्र है, वह जुमला खुद उस पर दलालत कर रहा है, यह उसी की गरज की तफसील वाके होते हैं ना, तो जब यह उसी की गरज की तफसील है तो गोया उस जुमले के अंदर इजमालन वह बात आ चुकी है, जब एक दफा आ चुकी है तो दोबारा उन अफाल को जिक्र करेंगे तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, लिहाजा ऐसे मौके पर हजफ करना वाजिब है। बात समझ में आ गई, चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।